बैठ जाएं। सबको शुभ संध्या कहना चाहता हूं। आज रात्रि यहां होने के लिए आनंदित हूं। यहां उन्हें शानदार सौभाग्य समझता हूं। ये सुंदर नया आराधनालय प्रभु की आराधना के लिए, कुछ समय से हम इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि लोगों के साथ संगति का समय आएगा और आशीषों का आनंद लेंगे, और इस बात का विश्वास करते हैं हम आप लोगों के लिए एक आशीष होंगे। और जैसा कि ये सप्ताह जा रहा है, हम जानते हैं कि बेदारी की सभा आ रही है, गुरुवार से आरंभ है। दोपहर बाद भाई विलियम से सुना कि गुरुवार रात्रि एक शानदार आश्चर्यजनक की होगी। भाई और रॉबर्ट हमारे बीच बुधवार रात्रि बोलने के लिए होंगे। ये हम सबके लिए शानदार आश्चर्य होगा, क्योंकि भाई ओरल निश्चय ही एक जबरदस्त वक्ता हैं, और उनसे फिर मिलना मुझे स्वयं को अच्छा लगेगा और हाथ मिलाना। और पिछली रात्रि हम टेम्प असेंबली ऑफ गॉड में थे। मैं विश्वास करता हूँ ये वहाँ पर था। बीती रात्रि टेम्प में हमारा शानदार समय था, और हर कलीसिया में हमारा एक अच्छा समय रहा, जहाँ हम फीनिक्स के क्षेत्र में जा रहे हैं और टेम्पी में भी। और हम इन सब बातों की बहुत ही सराहना करते हैं, जिसे हम कठिनता से प्रकट कर पाते हैं। बहुत ही कम मुझे अवसर मिलता है कि हर कलीसिया में एक रात जाऊं और लोगों और सेवक गणों से बातें करूं। इससे मुझे अवसर मिलता है कि मैं अपना आभार लोगों को व्यक्त करूं, और ये विभिन्न नामधारी और लोगों के झुंड, क्योंकि कार्य क्षेत्र और विदेशी कार्य क्षेत्र और सब जगह ये हमारे बड़े खर्चा वाहन करने वाले हैं, और इस प्रकार से मुझे अवसर मिलता है कि उनकी सराहना को प्रकट करूं और मैं उनके लिए कैसा अनुभव करता हूं। और हम स्वतंत्र लोगों के साथ भी थे, और मैं विश्वास करता हूं कि चर्च ऑफ गॉड, असेंबली ऑफ गॉड, और विदेश में फोर स्क्वायर, चर्च ऑफ गॉड, जीसस नेम, और वे सारे के सारे एक से लगते हैं जब हम एक साथ आते हैं कि युद्ध क्षेत्रों में सभा करें। और आप जानते हैं, यहाँ घर पर बहुत से विचारों की भिन्नता होती है, परंतु जब युद्ध क्षेत्र में होते हैं, क्यों वहाँ कोई अंतर नहीं होता। देखा, मेरा पालन पोषण बड़े भरे परिवार में हुआ। वहाँ 10 बालक थे, और हम लड़के पिछवाड़े होते, एक दूसरे से लड़ते। 9 लड़के, एक लड़की, और हम वास्तव में लड़ते, और सामने किसी का साहस नहीं होता कि हम में से किसी एक को ले, क्योंकि वे एक को पकड़ते तो चारों ओर से ब्रणम आ जाते। इसलिए मैं सोचता हूं परमेश्वर के बालकों के साथ यही बात है, वो कलीसिया। यहां कुछ वर्षों पहले मैं हॉस्टन में था, और वहां हमारी एक महान सभा थी, और वहां मेरे पास वहां बहुत से खर्चा उठाने वाले थे, भाई रेमंड रिची और असेंबली ऑफ गॉड और जीसस नेम के लोग, और बहुत से भिन्न भिन्न, और हमारी महान सभा थी, और हम म्यूजिक हाउस में थे। मैं समझता हूं लगभग 8,000 लोग बैठ सकते थे, और वहाँ एक बैप्टिस्ट सेवक था जो कि बाइबल पर वाद विवाद से मुझे इस बात की चुनौती देना चाहता था कि दिव्य चंगाई सही नहीं है। मैं इन चीजों से बहुत बार निकल चुका हूँ, क्योंकि एक अविश्वासी के कारण रात्रि बर्बाद करूँ जबकि वहाँ हजारों प्रार्थना के लिए बैठे हैं, आप समझे। इसलिए उसने ये बात अखबार में निकाल दी कि मैं ऐसा करने से डर रहा हूँ। और पुराना भाई बॉसवर्थ, जो लगभग 80 वर्ष का है, उसने कहा, ओ ये मुझे करने दें, आप जानिए मुझे कालिब का विचार आया, ये पहाड़ मुझे लेने दो। इसलिए मैंने कहा, भाई बॉसवर्थ, मैं नहीं चाहूंगा कि आप विवाद में पड़े। मसीह नहीं चाहता कि मसीह एक दूसरे से विवाद करे। यदि एक मनुष्य अविश्वासी है, क्यों, वो तो अविश्वासी है, बस उसके विषय में आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उसने कहा, अच्छा तो फिर ये क्या है। बोला, यदि हम अखबार की बात को यूं ही छोड़ देंगे तो वे कहेंगे हम तो बस एक झुंड हैं जो ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, बस भावनाओं पे चला रहे हैं। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि ये आप अवसर इसको मुझे दें। और मैंने उसे वहां खड़े हुए देखा, लगभग 80 वर्ष का, और वचन के विषय में आत्मविश्वास से पूर्ण। मैंने कहा, अच्छा भाई बॉसवर्थ, यदि आप मुझे अपना हाथ दें और मुझसे प्रतिज्ञा करें कि आप उपद्रव नहीं करेंगे। उसने कहा, ओ मैं उपद्रव नहीं करूंगा। इसलिए पत्रकार को बताने के लिए वो नीचे चला गया, और समय के चलते अखबार इसे कैसे उछालते हैं, देखिए पुरोहित गण हवा देंगे, आप जानते हैं। वहाँ स्टेडियम था, भाग दौड़ का मैदान, और उस रात्रि हमारे पास लगभग 30,000 लोग थे और ये वहाँ एक प्रदर्शन बन गया कि लोग हवाई जहाज रेलगाड़ी से आए। मैं आपको बताऊँ, वे एक कुछ ऊँटों पर, कुछ दो कुब के ऊँटों पर, कुछ तीन कुब के ऊँटों से, परंतु ये सब उसी कुएं से पी रहे थे जहाँ हम सब के लिए जगह थी। वहीं हर चीज एक साथ थी और ये चला। इससे वहाँ बहुत बड़ी आशीष मुझे मिली। सब सोचते हुए देखिए, जब वास्तव में दबाव आता है तो वहाँ एक चीज हमारे पास आम है। हम सब पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं और दिव्य चंगाई में, इसलिए हर एक अपना भाग देने के लिए आया। इसलिए हम जानते हैं कि उस रात्रि क्या हुआ, पवित्र आत्मा ने कैसे नियंत्रण लिया, और तब जब प्रभु का स्वर्गदूत नीचे उतर आया, उन्होंने उसका चित्र उतारा और तब वो वहाँ से वाशिंगटन डीसी गया कि इसकी पुष्टि करे, और तब इसके पश्चात वो जांच आदि के लिए लिया गया। और जॉर्ज जे लेसी एफबीआई के अध्यक्ष ने लिखा, एक लेख लिखा इस पर, और वो उंगलियों की छाप के कागजों का अध्यक्ष है। ये पूरी रीति से एक अलौकिक जीवन है। वो ज्योति कांच से टकराई। ये कोई मनोविज्ञान नहीं था। उसने कहा, मैंने अक्सर आपकी सभाओं को भी मनोविज्ञान कहा। मैंने सोचा आप उन लोगों के मस्तिष्क को पढ़ते हैं। उसने कहा, लेकिन कैमरे की कोई यांत्रिक आंख इस मनोविज्ञान को नहीं लेगी। श्रीमान ब्रणम, ये लेंस यानी कांच से टकराई है। उसने कहा, ये वहाँ है, इसलिए तब ये लिया गया। ये इसके पहले लिया गया था और इसके बाद बहुत बार। बस मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। यहाँ बहुत से लोगों ने चित्र देखा है, क्या आप लोगों ने नहीं? मैं समझता हूँ आप में से बहुतों के पास ये है। ये जानकर मुझे प्रसन्नता है। यहाँ तक कि पेंटिकोस्ट अभियान ने इस अंत के दिन में इस विषय पर बातें की। मैं आपको बताऊं, बाइबल के इतिहास को लेते हुए मैंने हाल ही में कलीसिया का इतिहास पढ़ा है, पिछले दो एक सालों में, अंतिम चेले यहुन्ना की मृत्यु के बाद से पित्मुस टापू पर, जब उसने पित्मुस टापू छोड़ा और वापस आया और पुस्तकों को लिखना समाप्त किया और उन्हें एक साथ इकट्ठा किया। उसे वहाँ इसलिए भेजा गया क्योंकि वह चेलों के लेखों को जमा करके उससे बाइबल बना रहा था। इसलिए उस पित्मुस टापू पर भेजा गया। जब उन्होंने उसे एक दिन और रात तेल में उबाला और फिर उसे टापू पर भेज दिया और उसने पुस्तकों को एक साथ जमा किया और जोड़ दिया। इसके अलावा परमेश्वर ने उसे बाइबल की अंतिम पुस्तक दी, प्रकाशित वाक्य, और फिर वापस आया और फिर उसके इतिहास से आरंभ किया। और फिर उसका एक चेला पॉलिकार्प, इग्नेशियस और उनमें से बहुत से नीचे, मार्टिन, इरेनियस, जोस्तुस, संत कोलंबा, और फिर अंधकार के कालों से होते हुए और लूथरन और वेस्ली तक होते हुए, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि प्रेरितों के दिनों के समय से उन सारे महान पवित्र आत्मा के कार्यों में होते हुए उनमें से कोई नहीं जिसने प्रभु के इन अंत के दिनों के अभियान को मत दी हो। यहाँ इन अंत के दिनों को, मित्रों, हम ऐसा अनुभव नहीं करते। अब ऐसी बातें घटित हो रही हैं जो कि परमेश्वर को सिद्ध कर सकती हैं, जैसा कि मसीह का चित्र हमारे पास है। उनके पास ऐसा यंत्र नहीं था कि इसे करते उन दिनों में, परंतु अब मनुष्य किसी चीज की उपलब्धि का यत्न करता है कि परमेश्वर से प्राप्त कर ले, और परमेश्वर उसी उपलब्धि को लेकर उसी के द्वारा स्वयं को सिद्ध करता है। इसलिए आप कभी भी परमेश्वर से आगे नहीं निकल पाएंगे क्योंकि वो सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी, अनंत है। वो इन सब बातों से कभी अलग नहीं हो सकता। हम केवल नम्र होकर उसकी सेवा करें। करने के लिए यही सबसे अच्छा है जो मैं जानता हूँ। मैं लज्जित हूँ, परंतु मैं विश्वास नहीं करता कि मैं पास्टर का नाम जानता हूँ यहाँ इस कलीसिया में। मैं भाई ग्रिफिथ, निश्चय ही मैं आपसे मिलकर खुश हूँ भाई, और यहाँ आने के लिए समय निकाला और ये संगति आपके साथ। हम सदा इसी प्रकार संबोधित करना पसंद करते हैं उनसे जो यहाँ सनी स्लोप में परदेशी हैं, क्योंकि हम यहाँ यात्री और परदेशी हैं। हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा घर ये नहीं है। हम अब्राहम के वंश के हैं, उस नगर को ढूंढ रहे हैं जिसका रचने और बनाने वाला परमेश्वर है। ये एक सुंदर नगर है। मैं नहीं सोचता कि इसके समान कुछ और है जो मैंने कभी देखा, और संसार के बहुत से राष्ट्रों में घूमा हूँ और मैंने कभी भी यूरोप, इटली, एशिया, कहीं भी पूर्व किसी का फिनिक्स एरिजोना से कोई तुलना नहीं। अब ये सही बात है, जो मैंने कभी देखा ये सबसे सुंदर स्थान है, परंतु वो ये एक ओर से सुंदर पगडंडी दिखाई पड़ता है जैसे कि वो महान सहस्र शताब्दी में होगा। इसलिए हम लोग ये हमारा घर नहीं, हम बस यहाँ एक परदेशी हैं और हम यहाँ संगति के लिए आते हैं। मेरे लिए यहाँ पर होना आशीष है और परमेश्वर की कलीसिया फल फूल रही है। ये देखना नया भवन और आदि आदि। परमेश्वर आप लोगों को सदा आशीष दे। मसीह के प्रति ईमानदार रहें, पास्टर के साथ सच्चे बने रहें और मिलकर कार्य करें। सब कोई सहयोग में रहे, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि जल्द ही प्रभु का आगमन है। अब इसके पहले कि हम वचन पर आएं, हम लेखक से प्रार्थना में पहुंच करें, जबकि एक क्षण के लिए हम अपने सिरों को झुकाए हुए हैं, इसके पहले हम सिर झुकाएं और हृदयों को झुकाएं, प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना के लिए कोई निवेदन है? इस बात को अपना हाथ उठाकर प्रकट करें। आपके हृदय में आपको किसी चीज की आवश्यकता है और कहें, प्रभु यीशु मुझे स्मरण रखें। मैं निश्चित हूं कि प्रभु हर हाथ को देखता है। हमारे स्वर्गीय पिता, हम बहुत ही आनंदित हैं कि हम आपको पिता कहकर पुकार सकते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के महान सृष्टिकर्ता, महान एलोहिम, एल शदाई, सामर्थ देने वाले, पालनहार, सर्व पर्याप्त, और आपके अपने प्रिय पुत्र के द्वारा उसने हमें बताया, यदि हम आपके पास आए और उसके नाम का प्रयोग करते हुए कुछ भी मांगे तो वो देखेगा, वो प्रदान कर दिया। और पिता, हम विश्वास करते हैं ये स्थितियों पर निर्भर करता है। यदि हम कुछ गलत मांगेंगे जो गलत था, तो हम में वो विश्वास नहीं हो सकेगा कि विश्वास करें कि उसका उत्तर मिलेगा। परंतु यदि हम आज रात्रि अपने हृदय को खोजें, हम कुछ ऐसा नहीं मांग रहे हैं कि जो गलत है, परंतु वो जो सही है, यही जो आप हमें हमारे पापों को और अपराधों को क्षमा करेंगे। उस सत्यता के लिए प्रभु, यही पहली चीज है। हम पाप को अपने ऊपर लिए भीतर जाने का यत्न नहीं करना चाहते, इसलिए जानते हुए कि प्रतिदिन परेशानियां और चीजें जो हमें घेर लेती हैं, जिन्हें कि हम अपने विचारों में भी ध्यान नहीं कर सकते, परंतु जब हम पवित्र परमेश्वर के विषय में सोचते हैं, वो जिसकी दृष्टि में स्वर्गदूत भी गंदे हैं, तब प्रभु हम जानते हैं कि हमें अवसर तक भी नहीं है कि जब तक कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा ना आए, और तब हम परमेश्वर की संतान हैं। हमारी गलतियों पर ध्यान ना दें, जैसे कि हम उन्हें मान लेते हैं। और पिता, आज रात मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस प्रार्थना मंडली को आशीषित करेंगे जिन्होंने अपने हाथ उठाए हुए हैं। आप जानते हैं कि इनमें से प्रत्येक के हाथ के पीछे क्या है, वे विचार, इच्छा और उद्देश्य और उठाने का उद्देश्य। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रत्येक के निवेदन को स्वीकार करें। और अब पिता, हम इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हम इस स्थान के लिए बहुत ही आनंदित हैं। जब हम आरंभिक दिनों को पढ़ते हैं, जब मसीहों से घृणा की जाती थी कि वे अपने लिए आराधनालय भी नहीं बना सके, कि वे इतने निर्धन थे, यदि उनके पास नहीं होता तो वे अपने लिए एक बना भी नहीं सकते थे, ये देखते हुए या होने के लिए सौभाग्य हो। और अब आज ये महान बढ़िया ढांचे ऊपर बढ़ रहे हैं, स्वच्छ, जहाँ लोग अंदर आ सकते हैं और परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हम इसके लिए बहुत ही धन्यवादित हैं, और लोगों के इस बलिदान के लिए अपने दशमांश और भेंटों और दानों ने प्रभु के घर को बनाया। अब पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस पास्टर को आशीषित करेंगे, इसके डीकन, इसके ट्रस्टी और हर सदस्य जो यहाँ आता है, ये बढ़े और बढ़े और बढ़े और होने पाए इस कलीसिया से पुराने समय की बेदारी पूरी घाटी के आर पार छा जाए। होने पाए यहाँ चिन्ह और आश्चर्यकर्म इस कलीसिया से हो, चंगाइयां, उद्धार, और होने पाए सारे राष्ट्र के लिए ये ज्योति स्तंभ हो, प्रभु से ग्रहण करें। होने पाए इस स्थान से अच्छे युवा प्रचारक को उनके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट हो कि कार्य क्षेत्र में जाएं, जहां भी वे बुलाए जाएं, प्रभु ये प्रदान करें। और आज रात्रि जबकि हम सब यहां एक साथ जमा हैं, पवित्र आत्मा आए, वचन में आए और हर हृदय के अंदर बीज बो दे जो यहां पर हैं। हमारा विश्वास इसे दिन और रात सींचे जब तक कि ये बड़े से पेड़ों में परमेश्वर की महिमा के लिए ना बढ़ जाए। प्रभु, हर बीमार को चंगा कर दे आज रात्रि, हर नष्ट व्यक्ति को बचा ले, सारे पिछड़ों को वापस ले आए और नए सिरों से उन लोगों को फिर से भर दें जो पहले से भरे हुए थे, इसे प्रदान करें प्रभु, क्योंकि ये हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, तेरा पुत्र, आमीन। जैसा होता है, मैं थोड़ी देर से था यहाँ आज रात्रि, जो मैं आशा कर रहा था उससे कुछ बढ़कर था, इसलिए हम कल रात्रि उस स्थान पर, मैं समझता हूँ उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है, और अब यदि आपके पास अपनी कलीसिया है तो कल रात्रि यहाँ ना आए, परंतु यदि आपके पास कलीसिया नहीं है तो आपको पाकर हमें प्रसन्नता होगी। हम सदा यही चाहते हैं कि लोग अपने कर्तव्य के स्थान पर खड़े रहें, चाहे जो हो। जब आराधनालय खुला है तो हर सिपाही अपने दर्जे और अपने स्थान में होना चाहिए। और इसलिए हमारा यहाँ आना एक महान समय है, व्यापारियों की सभा से पहले। और जैसा कि मैं पहले ही उद्घोषणा कर चुका हूँ, भाई रॉबर्ट्स यहाँ होंगे कि सभा को आरंभ करें गुरुवार रात्रि में। भाई रॉबर्ट्स से मिलकर हमें प्रसन्नता होगी। और तब मैं सोचता हूँ, हो सकता है शुक्रवार भाई वेलमर गार्डनर यहाँ आने वाले हैं, वो उस रात्रि में बोलेंगे या नहीं। मैं सोचता हूँ, मुझे दिया गया है कि यहाँ शनिवार प्रातः नाश्ते पर हूँ। और यदि परमेश्वर की इच्छा हुई और मेरे लिए शनिवार की प्रातः बोलना हुआ, तो मैं उस विषय को लेना चाहता हूँ। यदि परमेश्वर की इच्छा हुई, सबसे दीनहीन मनुष्य जिससे कभी मैं मिला। और फिर रविवार दोपहर बाद मुझे फिर बोलना है। इसलिए यदि आप अब शनिवार प्रातः यदि कोई आराधना नहीं है, जैसा कि मैं जानता हूं, और रविवार दोपहर बाद कोई आराधना सभा नहीं है जहां तक मैं जानता हूं। अब इसके पहले मैं आरंभ करूं, मैं भूल गया, मैं विश्वास करता हूं बिली ने बताया कि उसने सब बचे हुए वे प्रार्थना पत्र दे दिए हैं। क्या ये ठीक बात है? क्या आज रात्रि यहाँ प्रार्थना पत्र दिए गए हैं? ठीक है, उसने थोड़ा सा हिस्सा दे दिया है दूसरी कलीसिया में पिछली रात्रि, क्योंकि मैं लोगों को बहुत रोके रखता हूँ। मैं लंबे समय तक प्रचार करता हूँ, 6 या 7 घंटे कभी कभी इस प्रकार से, जब मैं बंद जाता हूँ। अब मैं नहीं, आज रात्रि मेरा उद्देश्य आधे घंटे से अधिक प्रचार करने का नहीं है। इसलिए मैंने सोचा हम प्रार्थना पत्र दे देते हैं और फिर हम आप आधी रात्रि में घर जा सकते हैं, जो भी है। इसलिए इसके पश्चात हम प्रार्थना पंक्ति को लेंगे, इसलिए ये इसका आधा होगा। और मैं अधिक नहीं जानता, परंतु इसलिए मुझे अधिक समय लगता है कि जो मैं जानता हूँ उसे बताऊँ। मैं इसे अच्छी तरह बताना पसंद करता हूँ। आप जानते हैं, मैं इसमें समय लेता हूँ। ये अच्छा है, मैं वहाँ थोड़ा छेड़ रहा था। मैं 45 मिनट में बाहर होने का यत्न करूंगा, या कुछ प्रार्थना पंक्ति में। मेरे पास यहाँ एक छोटा सा वचन है आज रात्रि, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ कि उसमें से एक मूल पाठ लूँ। और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर इसे आशीषित करेगा। यदि आप घर जाकर इसे पढ़ना चाहते हैं, तो ये मरकुस का 10वां अध्याय और 28वां पद है। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। अब मैं एक पाठ लेना चाहूंगा कि एक छोटा संदर्भ बनाऊ कि सब कुछ छोड़ रहे हैं, और फिर कुछ ही क्षणों में हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। और अब वे जो मरकुस के 10वें अध्याय से परिचित हैं, इस पृष्ठभूमि से यीशु इसके पहले तलाक के विषय में बातें कर रहा था, और फिर वहाँ बहुत ही प्रभावित करने वाली घटना घटित हुई। वहाँ एक धनी व्यक्ति उसके पास भागता हुआ आया और बोला, भले गुरु, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अनंत जीवन पा सकूँ? और उसे बताया, आज्ञाओं को माना कर। उस युवा पुरुष ने कहा, मैं इन्हें बालकपन से करता आ रहा हूँ, या जो आज्ञा है। और उसने उसे बताया कि वे क्या थी, और उसने कहा, मैंने इन्हें किया है। उसने कहा, परंतु तुझ में एक घटी है, यदि तू अनंत जीवन लेना चाहता है और सिद्ध हो, तो फिर मैं जो तेरे पास है उस सब को तू बेच दे और इसे कंगालों को दे दे, अपनी क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। आइए हम इसके पहले कि अपने विषय पर आए, इस युवा पुरुष के पीछे कुछ क्षणों के लिए चलें। आपको पृष्ठभूमि देने के लिए, अब आप देखिए, युवा पुरुष से सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा गया, परंतु इसने ऐसा करने से मना कर दिया। और कभी कभी हम स्मृति और धन और आदि आदि को सफलता पर लागू करते हैं, तो ये युवा पुरुष एक सफल युवा पुरुष था, और फिर भी अनंत जीवन नहीं। इसलिए कभी कभी सफलता का सदा ये अर्थ नहीं कि ये परमेश्वर की आशीष है, परंतु आइए हम उसके पीछे जाएं। हम उसे उसकी जवानी में पाते हैं, युवा, शायद सुंदर युवा, अच्छे वस्त्र पहने हुए। बाइबल ने कहा, जिसे यीशु ने प्रेम किया उसे एक अच्छा, भला, सभ्य, समझदार होना चाहिए। उसे कुछ अच्छा ही होना चाहिए, या तो फिर वो प्रभु यीशु से प्रशंसा नहीं पाता, क्योंकि जब यीशु ने उसे देखा, उसने उससे प्रेम किया। उसके पास एक प्रकार का प्रभाव था, अच्छा दिखने वाला, साफ सुथरा सज्जन, सदी हुई देह का लड़का। और वो यीशु के पास गया, संभवतः अपनी ईमानदारी से सोचता हुआ, और बोला, मैं ये जानना चाहूँगा मैं क्या कर सकता हूँ कि अनंत जीवन को पा लूँ। और जब उसे उस सब से अलग होना था जो उसके पास था कि अनंत जीवन पाए, तब प्रश्न द्वार पर था कि आप इसे कर सकते हैं या नहीं। और यही प्रश्न हम सबके सामने है, और यीशु ने उससे वास्तव में करने को कहा कि जो उसके पास था सब छोड़ दे, अपनी क्रूस उठाए और उसके पीछे हो ले। और हम कहानी को जानते हैं, वो दुखी होकर चला गया क्योंकि उसके पास बहुत धन था। तब यीशु ने घूमकर कहा, एक धनी मनुष्य के लिए कितना कठिन है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे, जैसा ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना, परंतु यह मनुष्य के लिए असंभव है। उसने कहा, परमेश्वर के लिए ये असंभव नहीं। आइए इस युवा शासक के पीछे चलें। अगली बार हम उसे बाइबल में पाते हैं, वो कभी नहीं, जैसे ही उसने यीशु के पीछे चलने के सुअवसर को ठुकरा दिया जब उसके ऊपर ये कठिन बात रखी गई। आप देखिए, हम हर उस चीज को थामे रखना चाहते हैं जो हम रख सकते हैं और फिर यीशु का अनुकरण करते हैं, परंतु कभी कभी यीशु चाहता है कि हम सब कुछ छोड़ दें ताकि हम दोनों हाथ उस पर रख सकें। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि इस कारण से हम उसे पकड़े हुए हैं। मुझे एक छोटी सी बात स्मरण आती है जो कि अक्सर मैं अपनी दो छोटी लड़कियों को बताता था, या वे उतनी छोटी नहीं रही, अब वे काफी बड़ी हो गई हैं, परंतु जब वे छोटी थीं, उनमें से एक रिबेका है, वो बड़ी वाली है, और सारा वो छोटी वाली, और बेकी की नीली आंखें हैं, सारा की भूरी आंखें, परंतु वे दोनों पिताजी की लड़कियां हैं, आप जानते हैं कि, और इस प्रकार से वो मेरे घर वापस आने की प्रतीक्षा करती हैं, और वे सदा मुझे देखना पसंद करती हैं। इस प्रकार बेकी एक प्रकार से लंबी थी, पतली लड़की, सारा छोटी, एक प्रकार से कद में छोटी छोटी लड़की, और इसलिए वे एक रात्रि मेरी प्रतीक्षा कर रही थी कि मैं घर वापस आऊं, और मैं सभाओं में बाहर था और उन्हें मालूम था कि मैं घर वापस आऊंगा, इसलिए उन्होंने सोचा थोड़ी देर तक वे प्रतीक्षा करेंगी और यदि मैं घर आता हूं तो वो मुझसे मिलना चाहती थी। ठीक रेत वाला उसने उनकी आंखों में रेत डाली और वे नींद से भर गईं, और अंत में वे पलंग पर चली गईं और अपने अपने कमरे में, और मैं देर से आया। इस प्रकार मैं आया और बहुत ही थका हुआ था, पलंग पर चला गया और सभा के बाद और आदि आदि कुछ सप्ताहों की सभा के बाद मैं इतना थक गया था कि मैं सो नहीं सका, और मैं लगभग 2 या 3 घंटे सोया, उठ गया और बैठक में जा करके कुर्सी पर वहां बैठ गया। मैं वहां प्रातः जल्दी वहां कुर्सी पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद बेकी अपने शयन कक्ष में जागी, उसे लगा कि दिन निकल आया है, और उसने बड़े कमरे में से होकर देखा और उसने मुझे वहाँ कुर्सी पर बैठे देखा। वो पलंग सर उतर कर तेजी से आई, वो छोटी लंबी लंबी टांगे बस भागी। अच्छा, इससे सारा चेत गई, और मैं नहीं जानता कि आपके बच्चे ऐसा करते हैं कि नहीं, परंतु मेरे करते हैं। आप कुछ बड़े वाले के लिए लेकर आए और दूसरा वाला मेरा हाथ पकड़ लेता है। सारा रिबेका का पजामा पहने हुए थी, उसके पांचे लंबे थे, आप देखिए उसके लिए बहुत बड़े, और वो पलंग से उतर कर आई और वे बड़े लंबे पांव तेजी से, और वो रिबेका से कठिनाई से बना पाती थी, और रिबेका ने उसे मेरे लिए मारा और वो मेरी गोद में कूद कर चढ़ गई और अपने दोनों हाथ मेरे गले में डाल लिए, जैसा कि वो मेरे दहने घुटने पर थी और उसके लंबे पांव फर्श पर टिके हुए थे और उसका संतुलन सही था, और इसने एक प्रकार से मुझे किसी पहली बड़ी संस्थाओं की याद दिला दी, आप जानते हैं जो बनी, एक प्रकार से लंबे पैरों वाले आदि आदि, सही संतुलित से, और फिर सारा आ गई, एक छोटी युवा कलीसिया, आप जानते हैं, जो अधिक समय से बाहर नहीं थी, और उसने एक प्रकार से देखा कि बेकी ने उसे हरा दिया, वहाँ उसे पिछाड़ दिया। इसलिए रिबेका ने मेरे चारों ओर हाथ डाल दिए, उसने चारों ओर देखा, उसने कहा, सारा मेरी बहन, मैं तुझे एक बात बता दूं। वो बोली, मैं यहाँ पहले आई, और कहा, मैंने पिताजी को सारा का सारा ले लिया, तेरे लिए कुछ नहीं बचा। वे सारे समय हमें यही बताने का यत्न करती, कहा, मैं यहाँ पहले आई और मैंने पिताजी को सारा का सारा ले लिया और तेरे लिए कुछ नहीं बचा। बेचारी सारा का मुंह लटक गया, छोटा सा होंठ नीचे लटक गया, वो जाने लगी, बड़ी बड़ी भूरी आंखों में आंसू भर आए, और बेकी ने अपना सर मेरे कंधे पर रख लिया, मेरे गले लग गई, और मैंने अपनी उंगली बढ़ाकर और अपना दूसरा पैर आगे कर दिया, और वो आ गई, मेरे दूसरे पैर पे चढ़ गई, और वो अपना संतुलन नहीं बना पा रही थी, उसके पैर फर्श पर नहीं लग पा रहे थे, परंतु पैरों पर थी, जैसे भी वो इधर उधर हो रही थी। इस प्रकार से उसे गिरने से रोकने को मैंने अपने दोनों हाथों से उसे घेर लिया कि उसे थामे रहूं, और मैंने उसे अपने पास पकड़ रखा था, और उसने अपना छोटा सा सिर मुझसे सटा रखा था। उसने अपने को ऊपर करके बेकी को देखा और कहा, अब रिबेका मेरी बहन, मैं भी तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। उसने कहा, ऐसा हो सकता है कि तुमने पापा को सारा का सारा ले रखा है, परंतु मैं चाहती हूँ कि तुम जानो कि पिता पापा ने मुझे सारा का सारा ले रखा है। ये ठीक बात है। इस विषय में इस प्रकार से हम चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम चाहते हैं कि वही हम सबको ले ले, इसलिए सब में इसे करने के लिए हम बस विश्वास के द्वारा बाहर चलते हैं और उसका विश्वास करते हैं। यही बात है, बस विश्वास करते हैं। हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, इसकी व्याख्या करने की कोई विधि नहीं। हम बस इसका विश्वास करते हैं और इसे इसी प्रकार लेते हैं। वो धनी युवा पुरुष, वो अपने आप को मसीह को नहीं दे सकेगा, इसलिए वो चला गया। और बाद में हम उसे पाते हैं कि वो बहुत ही फलवंत हुआ, यहाँ तक कि उसके खत्ते भर गए, जब तक कि उसने ये नहीं कहा, मेरे प्राण विश्राम कर। ओ, वो समृद्ध हो गया। हर चीज उसके पास इतना था कि उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। परंतु कुछ घटित हुआ। अगली बार हमने उसे देखा, अधलोक में उसने अपनी आंखें उठाई और उस भिखारी को दूर अब्राहम की गोद में देखा। ये इसलिए हुआ कि वो सब कुछ छोड़ने को तैयार नहीं था कि प्रभु यीशु का अनुकरण करे। और जब ये घटित हुआ और इस युवा शासक ने जो उसके पास था न छोड़ा कि यीशु का अनुकरण करे, ये तो पतरस को स्पष्ट हो जाना चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ कि वो यही था जिसने ये टिप्पणी की थी, ये प्रश्न उठाते हुए पूछा और कहा, अब हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमने सब कुछ छोड़ दिया है। देख हमने क्या किया है, हमने अपने घर छोड़ दिए, हमने अपना परिवार छोड़ दिए, हमने अपनी जमीनें छोड़ दी, जो कुछ हमारे पास था सब छोड़ दिया कि तेरे पीछे हो लें। ये उस पर स्पष्ट होने लगा। हो सकता है वो यीशु के संग कार्य में इतना संग लग गया मसीह को देखते हुए और आदि आदि, ताकि वो उस पर कभी स्पष्ट नहीं हुआ कि उसने अपना घर छोड़ दिया, उसने अपना परिवार छोड़ दिया, उसने अपने पिता को छोड़ दिया, अपनी माँ को, उसने वो सब छोड़ दिया जो उसके पास था ताकि यीशु के पीछे पीछे चले। परंतु ये ठीक वही था जो परमेश्वर की मांग थी, मेरे पीछे चलने के लिए सब छोड़ दो। परमेश्वर की यही मांग है, हमें भी यही करना है। कभी कभी हमें अपने विचारों को छोड़ना पड़ता है। यदि हमारे विचार परमेश्वर के वचन के विरोध में हैं, हमें अपने विचार छोड़ने होते हैं कि उसके पीछे चलें, और उसके पीछे चलने का केवल एक ही तरीका है कि उसके वचन का पालन करें, उसे मानें, और परमेश्वर का निवेदन, परमेश्वर की मांग कि उसके पीछे चलने के लिए सब छोड़ दें। ऐसा करने में कभी कभी हम ये पाते हैं हमें अपने मित्रों को भी छोड़ना है। बहुत सी बार ये करने में कठिन होता है। अब बहुत से लोग जब वे पहले पहल मसीह में आते हैं और आत्मा से भरे हुए, हो सकता है जैसे महिलाएं उनकी दावतें होती जिनमें वे जाया करती थी, वे किसी निश्चित निश्चित रात्रि को जाती थी जहां पड़ोस में वे जुआ खेलती, सारे पड़ोसियों से जान पहचान और आदि आदि, पड़ोस की कोई निश्चित सोसाइटी, और वे वहां जाकर भोंग को खेलती। और ये स्त्रियां, आप जानते हैं, इस विषय में कुछ कहने जा रही हैं, वे इसे समझना नहीं चाहती, परंतु फिर भी आपको वो चीज छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जुआ खेलना, ताश खेलना सही चीज नहीं है, ये तो आपको छोड़ना ही है यदि आप मसीह के पीछे चलती हैं। कभी कभी हमारी कलीसिया में स्त्रियां जो कि अपमानजनक वस्त्र पहनती हैं, जैसे छोटे छोटे कपड़े और ये डांगरियां, और बाइबल कहती है परमेश्वर की दृष्टि में ये घृणित है कि स्त्री इस प्रकार के कपड़े पहने, वो कोई मतलब नहीं कि वो क्या सोचती है, उसे ये छोड़ना ही है। कभी कभी हम पाते हैं स्त्रियां जब वे इस मार्ग पर आती हैं और बच जाती हैं, और वे बाल कटा करती हैं, और वे बाकी संसार के समान लोकप्रिय होना चाहती हैं, परंतु वे पाती हैं ये कठिन चीज है, क्योंकि वे उसको पुराने रिवाजों का कहेंगे। जब आप मसीहों के समान कपड़े पहनेंगी, मसीहों के समान व्यवहार करेंगी, मसीहों के समान जीवन जिएंगी, वे आपको पुरानी रीति वाले कहेंगे, परंतु आपको सब छोड़ना पड़ेगा कि उसके पीछे चलें। यीशु ने कहा, या वचन कहता है, वो जो संसार से प्रेम करता है या संसार की चीजों से, तो फिर परमेश्वर का प्रेम उसमें है ही नहीं। ठीक है, इसमें तो सब कुछ छोड़ना होगा। जब आप सब छोड़ने के इच्छुक हैं कि उसके पीछे चलें, तो यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तो तुम चाहे जो मांग सकते हो और ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। परंतु ये जानते हुए कि वे चीजें गलत हैं, आप नहीं मांग सकते। आप जानते हैं कि आप गलत हैं। बाइबल इसके विरोध में है। ताश खेलना, धूम्रपान, मद्यपान, अपमानजनक वस्त्र पहनना और मसीह होने का दावा करना, यदि आपके अंदर का आत्मा इसे दोषी नहीं ठहराता तो फिर उस आत्मा के साथ जो आपके अंदर है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि परमेश्वर जिसने वचन लिखा है वचन है और वचन आप में है और ये आपको दोषी ठहराता है। इसे करना ही है और यदि ये नहीं करता तो आपको धोखा दिया जा रहा है। कैसे पवित्र आत्मा कुछ लिख सकता है और आप घूमकर उसके विरोध में करें और कहें कि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है? आप ये नहीं कर सकते। इसलिए धूम्रपान करना, शराब पीना, ताश खेलना, बाल कटाना, छोटे कपड़े पहनना और इस प्रकार की चीजें गलत हैं, पाप से भरी गलत हैं और आप कभी भी कहीं नहीं पहुंचेंगे जब तक आप इसे छोड़ ना दें। ये आपके पेंटिकॉस्टल अभियान में घुस रहा है। आपको लज्जा आनी चाहिए, आपको लज्जा आनी चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि हम समस्त संसार में बेदारी नहीं ला सकते। कोई आश्चर्य नहीं हम पेंटिकॉस्टल बेदारी नहीं ला सकते। कुछ घटित हुआ है, ये ठीक बात है। हमने ढील दे दी है और वे चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको सब छोड़ना होगा कि मसीह का अनुकरण करें। आपको अपने पुराने विचार छोड़ देने चाहिए। आपको उसके वचन से ढक जाना चाहिए और पवित्र आत्मा कभी भी किसी वचन का इनकार नहीं करेगा जो वचन उसने कभी बोला है। और यदि बाइबल के वचन परमेश्वर है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच वास किया। अब वचन आत्मा बन गया, हमारे अंदर वास कर रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँगा और तुम्हारे अंदर इस संसार के अंत तक, नष्ट हो जाने तक। अब वही परमेश्वर जिसने बाइबल लिखी तुम में है। तुम अपने नहीं हो, तुम संसार की वस्तुओं के लिए मर गए, तुम अपने ही विचारों के लिए मर गए और मस्तिष्क जो वो मन जो मसीह में था तुम में हो। तब आप सब कुछ छोड़ रहे हैं कि उसके पीछे चलें, ना कि अपने विचार। वो क्या कहता है? मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा। तब आप परमेश्वर के वचन के साथ समायोजन कर रहे हैं, उसके साथ अधिक समय तक टिक सकते हैं। परंतु मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। परंतु आप कहते हैं मैं सबको छोड़ दूंगा, तो फिर मुझे क्या मिलेगा? सबको छोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलता है? आप संसार से आशा कर सकते हैं आपकी हंसी उड़ाए। आप संसार से आशा कर सकते हैं कि आपको सब प्रकार के बुरे नामों से पुकारें। वे आपको कुछ भी कह सकते हैं, वे जो चाहें। आप त्यागे हुए और अस्वीकृत हो गए। यीशु उसके क्या कारण? इमैनुएल होते हुए परमेश्वर उसमें वास कर रहा है। उसने उसे उसकी कलीसिया के लिए इतना विचित्र बना दिया कि उसकी अपनी कलीसिया ने उसे बाहर कर दिया। जैसे ही वो अंदर आया, वही थे जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, वही थे जिन्होंने उसे दोषी ठहराया। उसने लोगों से प्रेम किया, वो पूरे हृदय से लोगों के लिए था, परंतु उसे सब कुछ छोड़ना था ताकि परमेश्वर के पीछे चले। और ऐसे हमें भी सब कुछ छोड़ना है कि परमेश्वर के पीछे चलें। अब मुझे बदले में क्या मिला? हम आशा नहीं करते। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम सेवकगण हम मत परिवर्तन करने वालों को कुछ अधिक विलासित बना देते हैं। ओ मसीह के पास आ जाओ, सब कुछ सुंदर है। परंतु आप देखिए, ये ऐसा नहीं है इस प्रकार से ये कहते हुए कि हर चीज सुखदायक और सरल है, क्योंकि कोई मसीही, बाइबल ने कहा वे सब जो मसीह यीशु में भक्ति का जीवन बिताना चाहते हैं उन्हें कष्ट उठाने होंगे। इसलिए यदि आप मसीह के लिए कष्ट नहीं उठा रहे हैं तो फिर कहीं कुछ गड़बड़ है। यदि शैतान आपके पीछे नहीं है तो उसने आपको पकड़ लिया है। वरन यही है, क्योंकि जब तक वो आपके पीछे है तो ये इस बात का चिन्ह है कि उसने अभी आपको पकड़ा नहीं है। परंतु यदि वो आपके पीछे नहीं है तो ये चिन्ह है कि उसने आपको पकड़ लिया है। जी हाँ, इसलिए बस याद रखिए, जब तक वो आप पर चीखता है तो आप अब भी उससे कुछ कदम आगे हैं और बस आगे बढ़ते रहें। परंतु वे सब जो मसीह यीशु में भक्ति का जीवन जीते हैं दुख उठाएंगे। उसने कहा आनंदित और मगन हो, क्योंकि उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को भी ऐसे ही सताया जो तुमसे पहले हुए। ये ठीक बात है। अपने लटके हुए चेहरों के साथ ना जाएं और कहें अच्छा मुझे तो ये नहीं करना चाहिए था। मैं समझता हूँ वे किसी के पक्ष में खड़े होकर मेरे विषय में बातें करें और कहें मैं पुरानी रीतियों से हूँ और मैं वो आदि आदि हूँ। आपको मगन और आनंदित होना चाहिए इस कारण से, क्योंकि आप उसके नाम की निंदा को सहन कर सकते हैं उसकी आज्ञाओं के पालन करने से, जिसके करने के कारण आप पर ये हुआ। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सकता है करूँगा, परमेश्वर कभी भी किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं हो सकता। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं। यदि आपने ये परमेश्वर के लिए किया है कि सब कुछ छोड़ दिया, परमेश्वर आपको हजार गुना लौटाएगा। ठीक, परमेश्वर इसे वापस कर देगा। आप संसार की चीजों को छोड़ दें और संसार को और संसार की चीजों को और परमेश्वर आपको कई गुना लौटाएगा। आज रात्रि यहाँ कितने इस बात के गवाह हैं? ठीक, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर इसे लौटा देगा। अब आइए कुछ चरित्रों को देखते हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। आइए विश्वास के पिता को लेते हैं, अब्राहम को। अब्राहम ने अपना देश, संपत्ति जो उसकी थी और सब कुछ, वो कसदियों के ऊर नगर से बुलाया गया और उसने अपने देश को छोड़ दिया, अपने घर को, अपने लोगों को और सब, और परमेश्वर के पीछे चल दिया। उसे सब कुछ छोड़ना, पीछे त्यागना था। उसने अपना देश छोड़ा, अपनी संपत्ति कसदियों के ऊर में, उसने अपनी संपत्ति छोड़ दी और परमेश्वर ने उसे सारा प्रतिज्ञा का देश उसे दे दिया। परमेश्वर बहुत सारे ब्याज के साथ वापस करता है। उसने उसे दिया। वहाँ उस दिन जब वो उससे मिला, उसने उससे कहा, अब्राहम उठ, पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में देख, मैं ये सब तुझे देता हूँ, ये सब तेरा है। आज रात्रि मसीहों के साथ यही मामला है। परमेश्वर ने हमें ये दिया है, परंतु हम खर्च करने से डरते हैं। जब आप मसीही हो जाते हैं तो आप बाइबल की हर प्रतिज्ञा के वारिस हैं। ये ठीक बात है। हर चीज जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है, आपकी है। ये एक बड़े महान खंभे वाले गलियारे के समान है और एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने इस छत वाले गलियारे में बपतिस्मा लिया है, जो कि मसीह है। ठीक है, यदि कोई मुझे कुछ दे, मैं इसे चारों ओर से घुमाकर देखने जा रहा हूँ और देखता हूँ कि मुझे क्या मिला है। मैं सोचता हूँ आज रात्रि एक मसीही को यही करना चाहिए कि देखें कि आपको क्या मिला है। यदि कोई चीज थोड़ी ऊपर को उठी हुई है जिस तक मैं नहीं पहुंच सकता, तो मैं एक सीढ़ी लूंगा और वहां तक चढ़ जाऊंगा। और यदि बाइबल में मुझे कुछ पहुंच से बाहर लगता है जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, तो मैं घुटनों के बल रहूंगा और याकूब की सीढ़ी पर चढ़ जाऊंगा जब तक वहां ना पहुंच जाऊं, क्योंकि ये मेरा है, परमेश्वर ने ये मुझे दिया है। यदि बाइबल में दिव्य चंगाई की प्रतिज्ञा दी हुई है और मैं बीमार हूँ, मैं तब तक टिका रहूंगा जब तक परमेश्वर मुझे देता है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है। मैं संसार को छोड़ दूंगा और उसने मुझे पवित्र आत्मा दिया है, मैं ठीक वहीं टिका रहूंगा जब तक वो मुझे वो ना दे, क्योंकि उसने इसकी प्रतिज्ञा दी है। यदि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है कि वो मेरे हृदय की इच्छा मुझे देगा और मेरे हृदय की इच्छा सही चीज है, तो मैं वहीं टिका रहूंगा जब तक परमेश्वर मुझे नहीं देता, क्योंकि ये प्रतिज्ञा है और मैंने सारा संसार छोड़ दिया है। मैं उसके पीछे चलना चाहता हूँ और वो भुगतान करेगा। मैं जानता हूँ ये सत्य है, ये बिल्कुल ठीक है। उसने क्या किया? उसने अपनी सारी भूमि, अपना सारा देश छोड़ दिया और परमेश्वर ने उसे सारा प्रदेश दे दिया, या सारा का सारा उपमहाद्वीप फिलिस्तीनियों का। उसने अपना छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा छोड़ा, हो सकता है एकड़ भर, जहां उसका घर बना हुआ था और उसका पुराना घर, हर चीज को प्राप्त करे जो वहाँ फिलिस्तीन में था। बहुत अच्छा। परंतु पहली बात जो उसे करना था कि वो स्वयं को अलग करे। उसने अपने आप को लोगों से और अपने सारे प्रियजनों से अलग किया और वे सारे मिलने जुलने वालों से जिनके साथ वो घूमता फिरता था, उसके लड़कपन के मित्र जो उसके साथ बाबुल से आए थे, और उसके सारे भाई बहन और उसके सारे मित्र जिन्हें वो अपने साथी समझता था। जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, उसने कहा, अपने सारे नाते वालों से स्वयं को अलग कर, इस सब से अलग हो जा। अब ये कठिन बात थी, परंतु उसने अपने आप को अपने सारे रिश्तेदारों से अलग कर लिया। क्यों? क्योंकि वे उसके साथ सहमत नहीं होंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वे सहमत हो रहे हैं? एक बूढ़ा मनुष्य 75 वर्ष का अपनी 60 वर्ष की पत्नी के साथ कह रहा है, आप समझे क्या, मैं यहाँ बाहर परमेश्वर से मिला और उसने मुझे बताया कि मुझे एक बालक होने वाला है, अब सारा के द्वारा। क्यों? वे उसके डॉक्टर मित्र ने कहा होगा, इस बूढ़े का दिमाग चल गया, परंतु वो तो पहले ही पिन और आदि आदि चीजें खरीद चुका, इसके लिए वो हर चीज उसने तैयार कर ली, क्योंकि वो जानता था उसे ये मिलने वाला है। ये ठीक बात है, इससे कुछ नहीं। क्यों? परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा दी है। और यदि लोगों का झुंड उस पर हंसना चाहता है और सोचता है कि उसका दिमाग ठीक नहीं है, वे हर विश्वासी के साथ इसी प्रकार से करते हैं। अब्राहम के सारे वंश के साथ ऐसा ही है। ये ठीक बात है। कभी कभी आपकी कलीसिया आपको बाहर भी कर देती है। आपकी सभा, वे स्थान जहाँ आप रहते हैं, पड़ोस में आपकी संगति, आपके संबंधी, कभी कभी आपका पुरुष मित्र या आपकी महिला मित्र आपको छोड़ देंगे। परंतु परमेश्वर की मांग ये है कि आप सब कुछ छोड़ दें ताकि उसका अनुकरण करें, हर चीज जो उसके विरोध में है छोड़ दें और उसके पीछे चलें। अब अब्राहम अपने लोगों को छोड़ रहा है, इसके बदले में उसे क्या वापस मिला? इसको छोड़ क्या आया? वो बहुत से राष्ट्रों का पिता हो गया। परमेश्वर ने उसे बहुत से राष्ट्रों का पिता बना दिया। उसने कितना थोड़ा सा छोड़ा, फिर देखिए वो क्या हो गया। यीशु ने कहा, वो जो छोड़ देगा मेरे लिए पिताओं, माताओं और आदि आदि को लेगा, सब कुछ छोड़ने और उसके पीछे चलने के द्वारा अब्राहम को क्या मिला? जी हाँ श्रीमान, बहुत से राष्ट्रों का पिता। परंतु पहले उसे अपने आप को सारे अविश्वास से अलग करना था, यहाँ तक कि अपने ठंडे गुनगुने कलीसियाई सदस्य भाई लूत से भी। उसे इसके लिए स्वयं को भी छोड़ना था। हर चीज जिसमें अविश्वास पाया जाता, आपको स्वयं को अलग करना है। कोई भी चीज, यदि ये मत्सार है, यदि आप कलीसिया में हैं और आप जिस पर निर्भर करते हैं आपका मत्सार और वचन पर विश्वास नहीं करते, यदि वचन उसके विरोध में है, मत्सार वचन के विरोध में है, आपको उसे छोड़ना ही है। आपको हर चीज छोड़नी है। और परमेश्वर ने अब्राहम को कभी आशीषित नहीं किया जब तक उसने पूरी रीति से आज्ञा का पालन नहीं किया। अब्राहम अपने पिता को साथ लेना चाहता था और बूढ़ा व्यक्ति सारे समय मरहम में एक मक्खी था। अंततः वो मर गया। फिर लूत, वहाँ झगड़ा और सब चीजें। और जैसे ही अब्राहम ने परमेश्वर की पूरी आज्ञा का पालन किया और स्वयं को अलग किया और लूत को एक अच्छी भूमि में जाने दिया, जहाँ कहीं भी वो जाना चाहता था, वहाँ सादोम में, तब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और कहा, अपनी आँखें उठा, मैं सारा का सारा तुझे देता हूँ। अब्राहम जिसने अपने आप को अलग किया था, वो जिसने सबको अलग कर दिया कि परमेश्वर का अनुकरण करे, पीछे चले, और वो विश्वास का पिता, ये वही है जिसका हम विश्वास करते हैं कि वो ईमानदार था। प्रतिज्ञाएं अब्राहम और उसके वंश से की गई। हम जो मसीह में मर गए, अब्राहम के वंश हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके वारिस। इसराइल ने मिस्र छोड़ा, उन्होंने वहाँ मिस्र में अपनी पुरानी जमीनें छोड़ दी। क्या पाने के लिए? फिलिस्तीन। वे मिस्र में बड़ी भयानक जगह से आए थे, कठोर काम लेने वाले। और आज बहुत से लोग, युवा स्त्रियां वहाँ सड़कों पर धूम्रपान, शराब पीना, जैसे कि हमने यहाँ रेडियो पर देखा उस दिन, पुलिस आकर इस युवा झुंड को सड़क पर लड़कियों को उन्हें गिरफ्तार करते हैं, उस पुरानी शैतान की आत्मा से जंगली हो जाते हैं और उनमें आ जाती है कि नया बुगली बुगली इस चीज को जो वे कहें, और वहाँ सड़कों पर दिमाग से पागल हो गए हैं। समझे, वास्तव में यदि किसी स्त्री में थोड़ी सी शालीनता हो, उसमें या युवा पुरुष में, किसी में भी, बात यह है कि ये कठोर अधिकारी उन्हें इसमें धकेल देता है। आप इसे छोड़ देते हैं और परमेश्वर आपको नृत्य देगा। ओह प्रभु, निश्चय ही वो देगा। यदि आप इसे छोड़ देंगे तो वो आपको एक देगा, परंतु आपको सारी चीजें छोड़नी होंगी कि इसे प्राप्त करें। आप इन दोनों के साथ साथ चलते नहीं रह सकते। उसने फिलिस्तीन पाया, अब्राहम ने, या इसराइल ने, उसने भूमि के बदले फिलिस्तीन पाया। उन्होंने वो पुराना देश छोड़ा और फिलिस्तीन पाया, जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। जी हाँ श्रीमान, उन्होंने क्या छोड़ा? उन्होंने गर्म सूरज छोड़ा वहाँ मिस्र में, कठोर अधिकारी। उस गर्म सूरज को छोड़ने से उन्हें क्या मिला? उन्हें अग्नि स्तंभ में साथ साथ चलने को उजियाला मिला। उस गर्म सूर्य को छोड़ रहे हैं ताकि अग्नि स्तंभ के उजियाले में चलें। क्या ही लेन देन है! मैं इस लेन देन को करना चाहता हूँ, क्या आप नहीं? एक अग्नि स्तंभ, प्राकृतिक की धूप में चलें, जहाँ वे कठोर अधिकारी के द्वारा चलाए जा रहे थे, वहाँ से बाहर निकलकर और परमेश्वर की ज्योति में चले। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के अधीन एक अग्नि स्तंभ उनकी अगुवाई प्रतिज्ञा के देश की ओर कर रहा है। आज वही बात है, इस संसार के उजियाले से बाहर आ जाएं, कि परमेश्वर की ज्योति में चलें। ये आपको प्रतिज्ञा की देश की ओर अगुवाई करेगा। उन्होंने मिस्र की लहसुन के भोजन, मांस का भोजन मिस्र में छोड़ दिया। जब उन्होंने उन पुराने मांस की हांडियों को छोड़ दिया तो उन्हें क्या मिला? उन्होंने स्वर्गदूतों का भोजन किया। मन्ना स्वर्ग से गिरता था उस लहसुन की जगह। अब यदि आपने कभी कुछ नहीं खाया सिवाय लहसुन के, मैं आपको कुछ बता दूं। परमेश्वर के पास स्वर्गदूतों के भोजन से स्वर्ग भरा पड़ा है कि आपको खिला दे। ये ठीक बात है। सरदूतों का खाना, उन्हें उसके बदले में ये मिला, मिस्र के पुराना लहसुन के बदले में। उन्होंने मिस्र का गदला पानी छोड़ा, उन्हें वहाँ क्या मिला? उस चट्टान से पिया जो जंगल में मारी गई थी, परमेश्वर का स्वच्छ जल। उन्होंने मिस्र का गदला पानी छोड़ दिया, पुराने नामधारी का उल्टा गदला पानी। इसी प्रकार से आज हमें किसी समय करना है, उस पुराने मत्सार और नामधारी को छोड़ना है जो कहते हैं आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, वे लोग पागल हैं, वे बस पवित्र शोर मचाने वालों का एक झुंड मात्र है। इस बात को पीछे छोड़ दो और यहाँ पर आकर भरे हुए सोते से पी लो जो इमैनुएल की शिराओं से बहता है, जहाँ पापी उसमें गोता लगाकर अपने सारे पाप के दागों को धो देता है। जी हाँ श्रीमान, उस पुराने कीचड़ के पानी को छोड़ दो जिसमें संदेह मिला हुआ है और घबराहट और तर्क और परेशानी और हर चीज, और रात के समय जाते हैं और सूप का खाना करते हैं, उन मुर्गियों को उबालते और 50 सेंट में एक प्लेट बेचते हैं कि प्रचारक को भुगतान करें। यदि जब आप परमेश्वर के विधान में आ जाते हैं और परमेश्वर की पवित्र आज्ञाओं में और परमेश्वर के साथ चलते हैं, आप अपना दशमांश देते हैं, प्रचारक का काम अच्छा चल जाता है। यदि बस आप इसे करने के लिए केवल परमेश्वर के मार्ग को ले, ठीक है, पुराना कीचड़ का पानी चट्टान से पीना। उन्होंने उन कमतर डींग मारने वाले मिस्री डॉक्टरों को छोड़ दिया, कहते हैं आज हम संसार के सबसे बुद्धिमान लोग हैं। उन्होंने डींग मारने वाले डॉक्टरों को छोड़ा ताकि महान डॉक्टर के साथ हो लें। आमीन। मैं आज कुछ उन डॉक्टरों को देखना चाहूंगा जो उस महान डॉक्टर के समान करना चाहते हैं जो उसने किया। वे लोग जंगल में 40 वर्ष तक रहे और बाहर निकलने पर उनमें से एक भी दुर्बली व्यक्ति नहीं था। उन 40 वर्षों में वहां 20 लाख लोगों जो उस समय बाहर आए निकले, हर रात्रि कितने बालक जन्मे, कितने बीमार हुए और उन्होंने किया। मैं डॉक्टर मूसा के पास जाना चाहूंगा और उसके बस्ते में देखें और देखें वो किस प्रकार के नुस्खे को उनको देता है। क्या आप ये देखना नहीं चाहेंगे? मैं कल्पना करता हूं बहुत से उस नुस्खे को देखना चाहेंगे। ठीक है, मैं आपको बता सकता हूं, मैंने ये पढ़ा है। आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं ये क्या है? मैं यहोवा तेरे सारे रोगों को चंगा करता हूं। उसके पास बस यही था, उसके पास यही आवश्यकता थी, क्योंकि उन्होंने डॉक्टरों की शेखी को छोड़ा, महान डॉक्टर के साथ हो लिए थे। जी हाँ श्रीमान, उन्होंने वहाँ छोड़ दिया। लोग जिन्होंने कहा आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, अब आश्चर्य कर्मों जैसी कोई चीज नहीं है, उन्होंने वो छोड़ दिया कि क्या करें। तो फिर उन्होंने क्या किया? वे ठीक वही उपस्थित रहे जहाँ आश्चर्य कर्म दिन प्रतिदिन घटित होंगे। आमीन। आज लोग कहते हैं कि आश्चर्य कर्मों जैसी कोई चीज नहीं है, इनके मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ है। ये ठीक बात है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मैं चिंता नहीं करता कि आपने क्या किया, मैं चिंता नहीं करता, मैं नहीं सकता कि आपके पास कितने भी प्रमाण हो। बोला मैं बस विश्वास नहीं करता। ठीक है, मैंने कहा ये अविश्वासियों के लिए नहीं है, ये विश्वासियों के लिए है, विश्वासी ये देखते हैं। ये ठीक बात है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, एक बार मुझे सड़क पर मिला, बोला आप अपनी शिक्षा में गलत हैं। मैंने कहा ये बाइबल है। उसने कहा आप गलत हैं। उसने कहा मैं आपके विरोध में हूँ। बोला तो मुझे अंधा कर दो। एक बार पौलुस ने एक मनुष्य को अंधा किया था। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, आप पहले ही अंधे हैं। जी हाँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ जो तुम्हारे पिता शैतान ने पहले ही कर दिया। ये ठीक बात है, आप पहले ही अंधे हैं। एक व्यक्ति कहता है इस प्रकार की चीज, वो इतनी अंधी है, वो धूप और अंधकार को नहीं जानता, वो जीवन या मृत्यु दोनों में अंतर नहीं जानता, ये वास्तव में अंधा होना है। जी हाँ श्रीमान, जी हाँ, महान डॉक्टर उनके साथ था और उन्होंने आश्चर्य कर्म होते देखे। निश्चय ही चेले, उन्होंने क्या छोड़ा था? उनके पास जाल, मछली के जाल, उन्होंने अपने मछली के जाल छोड़ दिए कि उसके साथ चले और उसके चिन्ह और चमत्कार देखते और मसीह होने के नाते उसकी सामर्थ। कोई भी जो अपने दिन की मछली पकड़ने को नहीं छोड़ेगा तो वो वहाँ कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपने जाल छोड़े मछली से भरे हुए, उन्होंने खींचना आरंभ किया और सबसे बड़ा शिकार खेला जो अब तक नहीं किया था। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था कि उसके पीछे चले, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में विश्वास किया था कि वही मसीह था और वे उसके पीछे चलना चाहते थे कि देखें मसीह के चिन्ह उनके द्वारा होते हैं, और उन्हें ये देखना ही था। मैं संसार में कुछ भी छोड़ दूंगा, मैं चिंता नहीं करता कि वो क्या है कि यीशु मसीह को स्वयं में प्रकट होते देखूं, विशेषकर जब वो मेरे जीवन में प्रकट हुआ कि मैं जानता हूं कि मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गया और मैं ये जानता हूं कि वो मसीहा है। मैं उसे उसके वचन पर लेने के द्वारा जानता हूं कि उसने मुझे पाप के जीवन से बचाया है और मैं जानता हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है। मैं उसके चिन्ह चारों ओर देखता हूँ जो इस पर संकेत करते हैं। मैं जानता हूँ कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। सब कुछ छोड़ रहे हैं, मैं कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं एक अच्छे संस्थान से हूँ, एक अच्छी कलीसिया से, बस सबसे अच्छा जो राष्ट्र में होगा उससे संबंधित हूँ। परंतु उन्होंने कहा, बिली तुम अपना मानसिक संतुलन खोने जा रहे हो और पवित्र शोर करने वाले होने वाले हो। मैंने वहीं पर कहा, आप मेरा संगति वाला पत्र अभी ले सकते हैं क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के अनुकरण करने जा रहा हूँ। ये ठीक बात है, सही है, और आपको हर चीज छोड़नी होगी। ये ठीक बात है कि उसका अनुकरण करूं, परंतु वो जो सब छोड़ देगा और उसके पीछे चलेगा, परमेश्वर उसे बहुतायत से आशीष प्रदान करेगा। इसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। ठीक है, अब चेलों ने अपने जाल छोड़े और मछली के जाल मछली से भरे हुए, उनका धंधा प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए उन्होंने अपने धंधे छोड़ दिए कि उसकी सामर्थ और चिन्ह को देखें। वे प्रशिक्षित मनुष्य थे, वे जानते थे कि मसीहा को क्या करना चाहिए। उन्होंने बाइबल में पहले पढ़ा था, वे समझ गए कि मसीहा क्या करने जा रहा है। वे जान गए थे कि वही समय था कि ये घटित हो। जब उन्होंने देखा कि ये मनुष्य दृश्य में उठा है जो चित्र में सही बैठता है, तब वे तैयार थे कि हर चीज छोड़ दें, कि सुने कि उसे क्या कहना था, क्योंकि यदि वो मसीहा था तो ये उनके लिए जीवन था, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे चलने के लिए निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने सब छोड़ दिया। ऐसा ही आज भी है। यदि ये ठीक है, यदि ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का संदेश इन अंत के दिनों में, जहाँ की उसने कहा कि वो पहली और अंतिम वर्षा बरसाएगा, यदि ये बातें ठीक हैं, तो सब कुछ छोड़ना योग्य है कि इसके पीछे चलें। यीशु ने कहा, जो विश्वास करेंगे उनके ये चिन्ह होंगे, वो जो मुझ में विश्वास करता है यद्यपि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा, और वो जो जीता और मुझ में विश्वास करता है कभी न मरेगा। वो जो मुझ पर विश्वास करता है वे काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। सच है ये। समस्त संसार में हर प्राणी के पास जाओ, जो विश्वास करते हैं उनके ये चिन्ह होंगे। मेरे नाम में वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, नाशक वस्तु पी भी जाएं तो भी उनकी हानि ना होगी। यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। यही जो उसने कहा है, जैसे पिता मुझे भेजता है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। पिता जिसने पुत्र को भेजा पुत्र के साथ गया और पुत्र में था। यीशु जो मनुष्यों को भेजता है उनके संग जाता है और उसके अंदर है कि उन्हीं कामों को करे। देखो मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और जगत के अंत तक, और जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। भाई, यदि ये पुराने मतसार से अच्छा नहीं और संसार की चीजों से और उनसे संबंध रखूं जो इस सब का इनकार करते हैं, क्यों? मैं सोचता हूं कि हमें संसार के सारे लोगों से सबसे अधिक खुशहाल होना चाहिए, ये देखने के लिए कि जीवित परमेश्वर हमारे चारों ओर इस प्रकार से है, ये जानते हुए कि हमने सब छोड़ दिया है कि उसके पीछे चले। आमीन। इससे मुझे धार्मिक अनुभूति होती है। यीशु के पीछे चलने के लिए सब कुछ छोड़ दे रहा हूँ। ऐसे ही आज है, हमें सब कुछ छोड़ना है। जैसे पहले उन्होंने किया, आपको भी वैसे करना है। अब आप किसी और के विषय में बातें करते हैं कि कुछ छोड़ रहा है। चलिए देखें, यीशु के लिए, यीशु ने हमारे लिए क्या छोड़ा? यीशु ने हर चीज छोड़ दी। स्वर्ग में उसका घर था, उसने स्वर्ग के घर को छोड़ दिया और पृथ्वी पर आ गया, और उसके पास सर टेकने को भी जगह ना थी। ये ठीक बात है। वो इतना नीचा हो गया, यहाँ तक कि इतना निर्धन, यहाँ तक कि उसके पास सोने के लिए पलंग नहीं था। उसने कहा, लोमड़ियों के भट्ट हैं और चिड़ियों के पास हवा, हवा वालों के पास घोंसले, परंतु मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने की भी जगह नहीं है। देखा, परंतु उसको इसके लिए क्या मिला? वो इतना ऊंचा उठा कि उसे स्वर्ग को देखने के लिए नीचे देखना पड़ा। वो संसार में आया, संसार में जो सबसे नीचा नाम जो लिया जा सकता था लिया। उसके पास सबसे नीचा नाम था, सबसे नीचा नाम लिया, बालजबूब कहलाया। बालजबूब एक, जब उन्होंने उसे आत्माओं को परखते हुए देखा इस प्रकार से, उन्होंने कहा, ये भावी बताने वाला है, ये बालजबूब एक शैतान है, भावी बताने वाला एक शैतान है, और उन्होंने उसे शैतान कहा। सबसे नीचा, उसके पास नीचा नाम था। वो सबसे नीचे नगर में गया और नगर का सबसे नाटा मनुष्य उसे ऊपर से नीचे देख रहा था, जकई। ये ठीक बात है। यरूहू में वहाँ नीचे उसने निश्चय ही ये किया। उसके पास सबसे नीचा नाम यहाँ इस पृथ्वी पर था। वो इस संसार में एक अवैध नाम के साथ आया, जैसे उन्होंने कहा, क्योंकि वे वास्तव में ये विश्वास करते थे कि ये बालक विवाह की प्रतिज्ञा के बाहर जन्मा है। उसे आरंभ ही से इस बात का सामना करना था। फिर उसे बालजबूब नाम दिया गया, सबसे नीचा जो हो सकता था। उसने अपना स्वर्गीय स्थान छोड़ा और उसे लेने के लिए नीचे आ गया। परंतु परमेश्वर ने उसे सब नामों से ऊंचा नाम दिया जो कि स्वर्ग में है, हर नाम जो पृथ्वी में नाम है, यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा परिवार और पृथ्वी का नाम। प्रभु यीशु, हालेलुया, वो उसने छोड़ा, उसे पुरस्कार मिला था, निश्चय ही उसे मिला। ठीक है, वो पृथ्वी पर आया, आकाश और पृथ्वी का रचने वाला, उसके पास खाने को कुछ नहीं था। शैतान ने उसकी परीक्षा ली, उसने हमारे लिए उपवास किया, परंतु उसने भोजन पाया जो कि दूसरे इस विषय में बिल्कुल नहीं जानते थे। एक दिन उसने इस प्रकार कहा, मेरे पास भोजन है। कहा, क्यों नहीं तुम आकर खाते हो? उसने कहा, मेरे पास जो भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। ये ठीक बात है, उसके पास भोजन था जिसके विषय में वे कुछ नहीं जानते थे। यहाँ पृथ्वी पर उसके पास छत नहीं थी, उन्होंने कहा कोई जगह नहीं, घर नहीं, उसके पास कुछ नहीं था, परंतु आप जानते हैं क्या, वो हम सब के लिए शरण स्थान बन गया। परमेश्वर ने उसे शरण स्थान बना दिया समस्त मानव जाति के लिए। उसके पास अपना सिर रखने को जगह ना थी, परंतु वो हमारा शरण स्थान बन गया। वे घटना वाले शरण स्थानों के विषय में बहुत बातें करते हैं। ओ प्रभु, हमारे पास एक है। ये ठीक बात है, घटना वाले शरण स्थान जमीन के किसी भट्ट में चले जाएं। और उन्होंने मुझे बताया वे बम जमीन के अंदर बने स्थानों पर धमाका और प्रहार करेंगे 150 फुट की गहराई तक और ऐसे ही कुछ 100 वर्ग मील तक। ये यदि आप भूमि में आधा मील की गहराई में हैं, ये आपकी सारी हड्डियां तोड़ देंगे। नीचे ही आप कहीं भी होंगे, परंतु हमारे पास शरण स्थान है, मसीह हमारा शरण स्थान है। आमीन। उस रात्रि मैंने कहा, वे रूसी लोग अपनी स्थिति पर शेखी मारते हैं कि हमने मनुष्य को सबसे पहले अंतरिक्ष में रखा है। मैं इस बात से सहमत नहीं, 2000 वर्ष पहले हमारा एक अंतरिक्ष में था। आमीन। ये ठीक बात है। जी हाँ श्रीमान, एक बिचवाई करने वाला। जी हाँ श्रीमान, वो स्वर्ग में जाता है और सेकंडों में वापस आता है। निश्चय ही हमारे पास एक मनुष्य अंतरिक्ष में है, उनके पास कुछ नहीं है। जी हाँ श्रीमान, ये ठीक बात है। ठीक है, हम पाते हैं कि उसके पास नहीं था, वो हम सब के लिए एक शरण स्थान बन गया। उसने अपने और अपने पिता के बीच पुत्र अधिकार को छोड़ दिया कि हमारे लिए पाप बना। क्या आप ये जानते हैं, वो पाप को नहीं जानता था, हमारे लिए पाप बना। हमारे पाप उस पर लादे गए, उसने पुत्र पद को छोड़ हमारे लिए पाप हो गया। अब वो पापियों को पुत्र बना सकता है। आमीन। ये एक अच्छा भाग है कि पापियों को लेकर और उन्हें पुत्र बनाता है। जब उसने अपना पुत्र पद छोड़ा कि पाप बन जाए, अब वो पापियों को लेता और उन्हें पुत्र बना देता है। आमीन। क्या ही सौभाग्य है। जी हाँ श्रीमान, परमेश्वर किसी भी चीज के लिए बिकाऊ नहीं। श्रीमान, आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर इसे देखता है कि उसका पुत्र पाप बलि हो गया ताकि अब वो खरीद सके पापियों को लेकर और उन्हें परमेश्वर का पुत्र बना दे। ये बात कितनी सुंदर है। जी हाँ, अब जी हाँ श्रीमान, उसने अपनी सामर्थ्य दे दी और निर्बल हो गया ताकि वो हमारा बल हो जाए। वो हमारी सारी पर्याप्त सामर्थ्य है, हमें किसी और सामर्थ्य की जरूरत नहीं सिवाय प्रभु यीशु की सामर्थ्य को छोड़। वो प्रतिदिन मेरी सामर्थ्य है, उसके बिना मैं गिर जाऊंगा। कवि ने कितने शानदार ढंग से कहा, आप क्या छोड़ते हैं जो आपने पाया, उसके लिए आपने कभी क्या छोड़ा? ओ, संसार छोड़ दिया, अपने विचार छोड़ दिए, अपने संदेह छोड़ दिए, अपनी घबराहट को छोड़ दें, इसे छोड़ दें और उसे स्वीकार करें, उस पर विश्वास करें। कहें, अब क्या ये ऐसा ही है? क्या आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए? इस प्रकार के विचार छोड़ दें, इसका विश्वास करें। किसी ने कहा, क्या यीशु वास्तव में चंगा करने वाला है या ये मस्तिष्क को चलाने वाले लोगों का झुंड है? इस विचार को छोड़ दें एक बार। अब आप कैसे जानते हैं कि ये सही होने जा रहा है या नहीं? ये एक प्रतिज्ञा है, इस प्रकार से आप ये जानते हैं। आप कहते हैं, ओ मैं विश्वास करता हूँ कि पहले पवित्र आत्मा लोगों के लिए होता था, बहुत पहले, केवल एक अनुशासन के लिए। ओ ये नहीं हो सकता। तब यदि ये है तो बाइबल स्वयं में विरोधाभास है। पतरस ने पेंतेकुस्त के दिन में कहा, प्रायश्चित करो और अपने पापों के मोचन के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारी संतानों के लिए है और उन दूर दूर के लोगों के लिए जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तब ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि हम सकते हैं। जितनों को परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए बुलाता है, आपके पास अधिकार है कि आप आए। इसके प्रति अपने विचारों को छोड़ दें और परमेश्वर के निर्धारित निश्चित वचन को लें। आप कहते हैं, क्या कोई ऐसी चीज है कि लोग अन्य भाषा में बोल सकते हैं या कोई ऐसी मूर्खता है या वे कुछ तुतलाते हैं? अपने विचारों को छोड़ दें। यीशु ने ये कहा, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगे। जी हाँ श्रीमान, बाइबल ने ऐसा कहा है। भाई क्या ये चिन्ह जो मैं सभाओं में देखता हूँ ये परमेश्वर के हो सकते हैं? निश्चय ही हो सकते हैं। मैं देखता हूँ कि लोग किसी भी प्रकार का जीवन जीते हैं, उन्होंने जाकर बीमारों के लिए प्रार्थना की और वे चंगे हो गए। मैं यीशु ने कहा मेरे नाम से कोई मनुष्य आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता और मेरे विषय में हल्का बोले, ये ठीक बात है। यदि मनुष्य गलत है और परमेश्वर का वरदान लेकर कुछ गलत करे तो परमेश्वर उसके साथ व्यवहार करेगा, परंतु ये परमेश्वर है वैसा ही है। निश्चय ये है क्योंकि वो ढोंगी है, ये आपको अच्छा चमकता हुआ बनाता है। आप नहीं सकते, केवल एक ही मार्ग है कि आपके पास वास्तविक हो। एक झूठा डॉलर वो एक वास्तविक डॉलर से बना है और हर कोई कहता है मैं कलीसिया में नहीं जा रहा हूँ, मैं कलीसिया में नहीं जाना चाहता, वहाँ बहुत सारे ढोंगी हैं। क्यों? आप तो उनसे छोटे हैं, आप उनके पीछे छिपना चाहते हैं, आप उनसे छोटे हैं, ये ठीक बात है। उस दिन मैंने अखबार में एक लेख पढ़ा जहाँ एक बूढ़ा मनुष्य, वो दोनों बहरा और गूंगा था और अंधा, वो हर रविवार को संडे स्कूल जाता और उन्होंने उससे ब्रेल के द्वारा पूछा तुम क्यों आराधनालय को जाते हो? प्रचारक क्या प्रचार करता है तुम सुन नहीं सकते? तुम कोई गाना नहीं सुन सकते हो? तुम क्यों आराधनालय को जाते हो? और उसने कहा मैं चाहता हूँ कि हर कोई जाने कि मैं किस ओर हूँ। शैतान ये जान ले कि हर कोई ये जाने कि वो किस ओर है। मैं सोचता हूँ ये अच्छा है। जी हाँ श्रीमान, यीशु ने और क्या किया? उसने अपना जीवन छोड़ा और दे दिया, उसने अपना जीवन दे दिया ताकि आपको और मुझे बचा ले, क्योंकि उसने अपना जीवन दिया। उसे ये देना ही नहीं था, उसने ये अपनी इच्छा से किया, उसे ये करना ही नहीं था, परंतु उसने ये चाह कर किया क्योंकि वो आपको बचा सके। और अब केवल वही है जो आपको बचा सकता है और कुछ नहीं जो आपको बचा सके। मैं जानता हूँ कि कुछ नामधारी हैं जो कहते हैं कि उनकी कलीसिया आपको बचाती है। आप कलीसिया के द्वारा बचे हैं, आप यीशु मसीह के द्वारा बचे हैं, या फिर आप नष्ट हैं। जी हाँ श्रीमान, आप कुछ नहीं कर सकते, एक छोटी सी भी चीज नहीं कर सकते, केवल अपने पापों से प्रायश्चित। यीशु मसीह बचाने वाला है। जी हाँ श्रीमान, उसने दिया, उसने अपना जीवन आपके लिए दिया। अब आज मैं ये सोचता हूँ जबकि हम बंद कर रहे हैं हम ये कह सकते हैं, तो फिर ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपना जीवन दें और अपना सब कुछ और हर सांसारिक चीज को छोड़ दें, हर चीज जो अधर्म है, अपने सारे अविश्वास को, हर चीज को, ताकि उसके पीछे पीछे चल सके जैसा उन चेलों ने किया। क्या आप ऐसा करना नहीं चाहेंगे? उसके पीछे चलें, किस लिए? कि उसके आगमन के महान चिन्ह को देखें। अब स्मरण रखें कि बाइबल ने प्रतिज्ञा दी है कि इन अंत के दिनों में समय की समाप्ति पर ये दूसरी मसीह ज्योति आ रही होगी। पिछली और अंतिम वर्षा एक साथ आएगी। भविष्यद्वक्ता ने कहा कि सांझ के समय उजियाला होगा। एक दिन होगा जिसे ना तो दिन ना रात कहा जा सकेगा। ये किस प्रकार का दिन होगा? वर्षा का सा, धुंधल का, उदास दिन। निश्चय है सूर्य उस धुंधल के बादल के ऊपर चमक रहा है। एक सूर्य चमक रहा है और उस धुंधल के से में से होते हुए ये फिर भी उजियाला दे रहा है, इसलिए आप चल सकते हैं। समझे कि कैसे फिर जाएं? यही है जो हमारे पास वर्षों वर्षों से है, 2000 वर्षों से। समझे, हम विश्वास के द्वारा चले और हमारे पास विचार है। ठीक है, ये ठीक बात है। ओ, हम विश्वास करते हैं, हम कलीसिया के सदस्य बनते हैं, अपने नाम पुस्तक में लिखवाते हैं और ये ठीक है। हम विश्वास करते हैं, हम इन चीजों को नहीं देखते जैसा उसने पिछले दिनों में किया। वहाँ पहले उन्होंने कहा वो सब जो चला गया था वापस आया, और ये अब उसी प्रकार से है, सैकड़ों सैकड़ों और सैकड़ों वर्षों से बस एक उदास दिन। परंतु उसने कहा सांझ के समय में उजियाला होगा। वही सूरज जो पूर्व में उदय होता है वही पश्चिम में अस्त होता है। वही यीशु जो था उसने अपना आत्मा पूर्व में उंडेला उन लोगों के ऊपर, वही यीशु इन अंत के दिनों में अपना आत्मा उंडेल रहा है उन पश्चिम के लोगों पर। उसने इसकी प्रतिज्ञा दी है, उसने एक प्रतिज्ञा की है। उसने कहा जैसा कि लूत के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। कैसे परमेश्वर स्वयं को मनुष्य की देह में प्रकट करेगा? वहाँ बैठकर और अब्राहम के साथ खाया, उसकी पीठ तंबू की ओर थी और सारा को बताया कि वह तंबू में क्या सोच रही है। अब्राहम को बताया कि उसका नाम क्या था और सारा का क्या नाम था और कैसे वो उनसे मिलने वाला था। और सारा ने इस बात का विश्वास नहीं किया और तंबू के अंदर हंसी। और स्वर्गदूत ने कहा सारा तू क्यों हंसी उस मनुष्य के पीछे तंबू में? यीशु ने कहा जैसे ये उस दिन में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिन में होगा। जैसा कि मैंने बीती रात्रि में कहा, अक्सर कहता हूँ, मैं फिर से उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। सदा तीन श्रेणियों के लोग होते हैं हमेशा, जैसे हाम, शेम और यापेत के लोग, नूह के तीन पुत्र, यहाँ नीचे आज तक तीन श्रेणी के लोग। अब हम उनकी ऐसी श्रेणी बनाते हैं, अविश्वासी, बनावटी विश्वासी और विश्वासी। अब इनका मिलान इस प्रकार से है, इसने वहाँ भी यही किया। यीशु ने कहा जैसा कि सादोम के दिनों में था वैसा ही ये होगा। अब्राहम जिसने सब छोड़ दिया कि पीछे पीछे चले, अब ये ठीक यहाँ पर है। उसने इस प्रतिज्ञा को वर्षों वर्षों पकड़े रहा, 25 वर्षों तक। यहाँ अब वो 100 वर्ष का है और वो यहाँ मैदान में है। उसके पशु दुबले हो रहे हैं, जल नहीं है। लूत वहाँ आनंद में जीवन बिता रहा है उन सारी चीजों के साथ जो उसने चाहा, और यहाँ सारा थी, एक समय सारे राष्ट्रों में सबसे सुंदर स्त्री, और अब वो यहाँ है, इस प्रकार सबसे वंचित है। हो सकता है श्रीमती लूत ने ये नए फैशन के बाल कटाए हों और ये सारी चीजें। वो वहाँ बहुत ही विलासिता में जी रही हो। वो मेयर की पत्नी थी और वो उस महान कलीसिया की सदस्य थी। जी हाँ श्रीमान, कोई संदेह नहीं कि उसके पास सब प्रकार की सोसाइटियाँ हों जो उसने कभी जीना ना चाही हो। उसे जिया जब तक कि उसने उन्हें ना छोड़ा हो, और वो नमक के खंबे में बदल गई, क्योंकि उसने स्वर्गदूत की आवाज से अधिक संसार से प्रेम किया। अब ध्यान दें, तीन श्रेणियां, अविश्वासी सदोमी, आधे गुनगुने कलीसिया के सदस्य लूत था, परंतु चुना हुआ बाहर बुलाई हुई कलीसिया अब्राहम और उसका झुंड थे। जब वे दूत, वे कहां से किसके पास आए थे? अब्राहम और उसके झुंड के पास, ठीक है। वे नीचे गए, उनमें से दो नीचे गए, उन आधुनिक प्रचारकों के समान। हमारे पास महान प्रचारक हैं जो आज नामधारी कलीसियाओं के पास जा रहे हैं। राष्ट्र के एक महान पुरुषों में से जिसे हम जानते हैं, बिली ग्राम, और वो निश्चय ही उन लोगों में धमाकेदार सुसमाचार दे रहा है। उन्हें बाहर बुला रहा है कि सादोम से बाहर निकलो। हमें चिल्लाना नहीं है कि सादोम से बाहर आओ, ये तो पहले ही बाहर है। यदि ये पवित्र आत्मा के द्वारा बुलाया हुआ है तो इसने बहुत पहले ही सादोम छोड़ दिया है। ये ठीक बात है, इसने सादोम छोड़ दिया। वो यहाँ बाहर अपने में जीवित है, बिल्कुल अलग। कलीसिया शब्द का अर्थ है बुलाए हुए, अलग किए हुए। यदि आप अलग किए हुए हैं तो आप तो उनके बीच में से निकलो, उनके अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ। यदि आपने ये नहीं किया है तो आप वहीं सादोम में हैं, तो आप गुनगुने कलीसिया के सदस्य हैं। तो फिर आपको अपने को अलग करना है और संसार की चीजों से अलग होना है, और बाहर आए और शुद्ध और पवित्र जीवन जिए, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलें। स्मरण रखें, उनमें से दो स्वर्गदूत नीचे चले गए, उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए। उन्होंने केवल एक ही आश्चर्य कर्म वहाँ किया कि लोगों को अंधा कर दिया जब वे उसके पास आए। अच्छा, तो वचन के प्रचार ने उनके साथ ठीक यही किया, लोगों को अंधा कर दिया। और आज ये महान सुसमाचार प्रचारक, हम बहुतों को जानते हैं जो यहाँ फिनिक्स में आए, और सुसमाचार प्रचारक जो इन कार्य क्षेत्र में गए और आश्चर्य कर्म नहीं किए और आदि आदि, परंतु उन्होंने उन अविश्वासियों को पूरी रीति से अंधा कर दिया, उन सदोमियों को वचन के प्रचार के द्वारा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। परंतु फिर यहाँ एक आत्मिक कलीसिया है, न कि स्वाभाविक कलीसिया, न ही सदोमी, परंतु आत्मिक कलीसिया जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जिनसे परमेश्वर मिला, जैसा अब्राहम था। वहाँ पर अब्राहम एक सिद्ध प्रतीक, उसके बाद उसके वंश का, कलीसिया में एक लोग उसके नाम के लिए, अन्य जातियों में से शाही वंश, जैसा कि मैंने रविवार को प्रचार किया, देखा। अब ये बाहर बुला ही कलीसिया, अलग किए हुए, संसार की हर चीज छोड़ दी, बाहर आ गए कि पवित्र आत्मा के संग संग चलें, जैसे अब्राहम ने किया। हमने सब प्रकार की चीजें देखी जो अब्राहम ने किया, करता आया, परंतु वो अंतिम चिन्ह क्या था जो उसने यात्रा के अंत के पहले देखा? वो आखिरी चिन्ह क्या था इसके पहले कि वो पुत्र जिसकी आशा की गई थी दृश्य पर आता? अब्राहम एक पुत्र की आशा कर रहा था, क्या ये ठीक बात है? क्या हम अब्राहम के वंशज हैं? तो फिर हम भी एक पुत्र की आशा कर रहे हैं, एक प्रतिज्ञा का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। और अब्राहम ने परमेश्वर का भेद भरे कार्य देखे जब उसने उसे बुलाया। उस समय वो छोटी ज्योति और बलिदान और अपने वाचा की पुष्टि उस पर की, और बहुत सी बार वो उससे विभिन्न तरीकों से मिला, परंतु आखिरी चिन्ह जो उसने अब्राहम को दिखाया जब वो शरीर में प्रकट हुआ और अपनी पीठ तंबू की ओर और सारा को बताया। कोई संदेह नहीं कि अब्राहम ने विश्वास किया कि वो परमेश्वर था। कुछ लोग विश्वास नहीं करते कि वो था, परंतु बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर था। अब्राहम ने कहा वो था, उसने उसे एलोहिम कहकर पुकारा। एलोहिम पृथ्वी और स्वर्ग का महान रचयिता है। अब उसने स्वयं को चिन्ह के लिए शरीर बनाया कि इन अंत के दिनों में, देखिए, सादोमी, अविश्वासी कलीसिया के सदस्यों को देखें। अब चुने हुए और बुलाए हुओं पर ध्यान करें, और इन चुने हुओं में उसने स्वयं को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रकट किया, मानव देह में। आमीन। क्या आप ये देख सकते हैं कि ये मसीहा है? परमेश्वर मसीह ने अपने आप को कलीसिया में दर्शाया। कलीसिया वही जीवन जी रही है, वही जीवन जी रही है, उन्हीं चिन्हों को कर रही है। वो जो मुझ पर विश्वास करता है वो काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। यदि किसी गुंडे की आत्मा मुझ में थी तो मेरे ऊपर बंदूक होती, यदि चित्रकार की आत्मा मुझ में थी तो मैं चित्रकार के समान चित्र रंगता और कर सकता, यदि मैकेनिक का आत्मा मुझ पर था तो मैं आपको बता सकता होता आपकी कार के साथ क्या गड़बड़ी है, समझे। और यदि यीशु मसीह का आत्मा मुझ में है तो मैं मसीह के कार्यों को करूंगा, क्योंकि ये मसीह का जीवन आप में है, समझे। किस में प्रकट हुआ, किसको प्रकट किया? उसने अपने पुत्र होने को त्याग दिया और पाप बन गया और हमारे पापों को ले लिया, ताकि वो पापियों को लेकर और उन्हें पुत्र बना दे। वो मैं हो गया ताकि मैं वो हो जाऊं, वो पापी बन गया ताकि मैं परमेश्वर का पुत्र हो जाऊं। वो ओ ये आश्चर्यजनक है जो उसने किया। देखा, उसने आपका स्थान ले लिया ताकि आप उसका स्थान ले सकें। आप उसके संगे वारिस हैं उस राज्य में। वो आपके समान पापी हो गया, आपके पाप उसके ऊपर रखे गए ताकि वो आपको ले सके और आपको स्वर्ग का साथी नागरिक बना दे और आपको परमेश्वर के राज में बैठाया। आप वही हैं, अपना आत्मा आप में डाला, जो काम उसने किए आप भी करेंगे। अब देखिए, जब वो पृथ्वी पर था उसने क्या किया, उसने अपने आप को कैसे प्रकट किया। आप इधर उधर घूमते नहीं फिरेंगे और नहाने के कमरों में जाएं और कलीसिया से दूर जाएं और बुधवार की रात्रि घर में रहें कि टेलीविजन का अश्लील कार्यक्रम देखें, ये कुछ इस प्रकार का, और अपनी कलीसिया छोड़ दें और सब इस प्रकार का, और कभी मसीह को देखने की आशा करें। आपको ये चीजें छोड़नी होंगी ताकि पवित्र आत्मा का अनुकरण करें, उसे मसीहा के समान प्रकट होने दें, जैसे कि पहले अनुयायियों ने किया। उन्होंने उसका अनुकरण किया देखने के लिए कि क्या वो मसीहा था। आप क्या सोचते हैं जब इंद्रियास सारी रात उसके संग प्रार्थना में रहा, और वो और फिलिपुस अगली प्रातः फिलिपुस एक मार्ग पर और इंद्रियास दूसरे मार्ग पर। इंद्रियास अपने भाई के पीछे गया और जैसे ही उसने शमौन को पाया उसने कहा, आकर देख हमें वो मसीह मिल गया है। वो जानता था कि वो मसीह था। क्यों? वो जानता था कि मसीह क्या होगा। वो वचन के अनुसार जानता था कि मसीह क्या होगा। अब उन दिनों में यहूदी वे पहचाने जाते थे, वे बड़ी महान कलीसियाएं। ओह, जब मसीह आता है तो आकाश के एक से दूसरे छोर तक तुरही फूंकी जाएगी और परमेश्वर कुछ घुमा देगा और स्वर्ग का गलियारा नीचे आ जाएगा और वहाँ स्वर्गदूत होंगे जो पृथ्वी के आर पार धमाकेदार सलामी देंगे और मसीहा आएगा और उन गलियारों में स्वर्गदूत और संगीत पर सवार होते हुए और इस प्रकार की चीजें मंदिर में नीचे आएंगी, उसमें आएगा, वो मसीहा होगा और वो राजदंड ले कर पृथ्वी पर राज्य करेगा। देखिए वो कितने भिन्न रीति से आया, परंतु वो वचन के अनुसार आया। गधी के बच्चे पर बैठा हुआ है, यरूशलेम में सवार होकर आ रहा है, नम्र और दीन, ये ठीक बात है, समझे। और यहाँ तक कि भविष्यद्वक्ता यूहन्ना भी घूम गया, उसने मसीह का प्रचार सूप हाथ में लिए हुए किया। वो अपना खलियान भली रीति से साफ करेगा, और जब वो आया तो वो नम्र और दीन था, परंतु यूहन्ना जानता था कि वो मसीहा है, क्योंकि उसने उसके ऊपर ज्योति देखी थी और वो जानता था। उसने कहा, वो जिसने मुझे जंगल में बताया कि जाकर जल से बपतिस्मा दे और जिस पर तू आत्मा को उतरते देखे और ठहर जाए, वही पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। किसी और ने ये नहीं देखा, यूहन्ना ने देखा। यूहन्ना से प्रतिज्ञा की गई थी। किसी ने सितारा नहीं देखा सिवाय ज्योतिषियों के, जिन्होंने उसका अनुकरण किया। और आज रात्रि ऐसा ही है, आप यहाँ दुगने अंधे होकर बैठ सकते हैं और परमेश्वर की सामर्थ को कभी नहीं देखते। आप इसे कभी नहीं देख सकते जब तक परमेश्वर ही आपकी ना खोल दे। जितनों को पिता ने मुझे दिया है वो मेरे पास आएगा, और कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता ही उसे ना खींच ले। बस यही है, ये तय हो गया। अब हम पाते हैं उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वे उसके पीछे पीछे चले और देखा कि वो मसीहा है। इंद्रियास ने जाकर पत्रस को बताया, कहा, तुम जानते हो हमारे पिता ने हमें क्या बताया है। संभवतः इसी क्रम में होते हुए, हम जानते हैं जब मसीह आता है मूसा ने हमें बताया है हमारा प्रभु परमेश्वर उसके समान एक भविष्यद्वक्ता को उठा खड़ा करेगा। और हम जानते हैं कि हमें सिखाया गया है यदि तुम्हारे बीच में कोई आत्मिक हो या भविष्यद्वक्ता हो और जो वो कहे घटित हो जाए तो उसकी सुनना, और यदि वो घटित ना हो तो उसकी ना सुनना। और हम जानते हैं कि मसीहा जो होगा केवल भविष्यद्वक्ता ही नहीं, वो परमेश्वर भविष्यद्वक्ता होगा। इसलिए ये मनुष्य वही है। इंद्रियास, तुम कैसे जानते हो? आकर देख ले। वहाँ गया और जैसे ही वो यीशु की उपस्थिति में आया, यीशु ने कहा, तेरा नाम शमौन है और तू योना का पुत्र है। वो तभी जान गया कि वो परमेश्वर का पुत्र था। यहाँ फिलिपुस नतेल के साथ आता है। जैसे ही नतेल उसके पास पहुँचा, जान गया। वे अनुमान लगा सकते थे, उनके बीच महान वार्तालाप थी। इस विषय में बात कर रहे थे, वहाँ आए और उसने कैसे ये बातें पत्रस को बता दी और उसे दूसरा नाम दे दिया और उसे बताया कि वो और उसका पिता कौन थे और आदि आदि। इस विषय में आप जानते हैं कि मसीह को भविष्यद्वक्ता होना है। भाई जब वो आया तब वो यीशु के सामने आया और यीशु ने कहा, देखो इजरायली जिसमें कोई दोष नहीं। उसने कहा, रब्बी तूने मुझे कब से जाना? उसने कहा, इसके पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू पेड़ के नीचे था मैंने तुझे देखा। उसने कहा, रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इसराइल का राजा है। उसके लिए पक्का हो गया। एक बेचारी दुखी स्त्री, अश्लील गंदी, 6 पुरुषों के संग रही, उसने 5 से विवाह किया और जिसके साथ वो रह रही थी वो उसका नहीं था। एक दिन कुएं पर पानी लेने गई और जब उसने वो पंप यानी बाल्टी नीचे डाली पानी की, पानी ले, और जब उसने खींचना आरंभ किया उसने देखा एक अधेड़ सा पुरुष वहाँ बैठा है, एक यहूदी। बोला, स्त्री मुझे पानी पिला। उसने कहा, हम में अलगाव है और ये तुझ यहूदी के लिए ऐसी रीति नहीं। यहूदी होने के नाते मुझ सामरी स्त्री से कहे ऐसी चीज के लिए, ये हमारे व्यवहार में नहीं है। उसने कहा, परंतु यदि तू जानती कि तुझसे कौन बात कर रहा है तो तू मुझसे पानी मांगती, तू मुझसे जल मांगती। वे बस कुछ क्षणों के लिए उसकी बातें, उनकी बातें आगे बढ़ी। वो क्या कर रहा था? ढूंढने का यत्न कर रहा था कि परेशानी कहाँ थी। अब यीशु को सामरिया होते हुए जाना था। स्मरण रखें, उसने स्वयं को केवल यहूदियों पर प्रमाणित किया और अन्य जाति जो कि हेम शेम के लोग, देखा, यापेत के लोग छोड़ दिए थे। हम एंग्लो सैक्सन, हम मूर्ति पूजक, उन दिनों में हम मूर्ति पूजते थे, याद रखें। क्यों उसने स्वयं को प्रकट किया? यीशु जब वो पृथ्वी पर था अन्य जाति पर उसी चिन्ह के द्वारा कि उन पर प्रकट हो, क्योंकि अन्य जाति मसीह की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। यहूदी मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे, सामरी मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने स्वयं को पतरस को बताने के द्वारा अपने आप को मसीह प्रकट किया, जिसे उसने स्वर्ग के राज्य की कुंजी दी, और नतेल पर और अंधे बर्तुलमई पर जब उसके विश्वास ने उसे रोक लिया, और लहू बहने वाली स्त्री और आदि आदि यहूदियों पर। परंतु यहाँ वो सामरी के सामने है और वो सामरियों के पास आया कि अपने आप को उन पर सच्चा मसीह प्रकट करे। अब सैकड़ों वर्षों से यहूदी और सामरी दोनों विश्वास कर रहे थे कि मसीहा आ रहा था। इसलिए यदि मसीह इस पृथ्वी पर था तो ये मसीह पर था कि अपने आप को प्रकट करे। उस बूढ़े शमौन को देखें जो मंदिर में गवाही के साथ था कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं प्रभु के मसीह को ना देख लूं। और उसी घड़ी मरियम बालक को अंदर लाई, पवित्र आत्मा शमौन से बोला, वो ठीक वहीं गया जहां वो था। इस प्रकार से उसने अपने हाथों को उठाया और कहा, तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति में बुला, क्योंकि मेरी आंखों ने उद्धार को देख लिया। शमौन इतना जीवित ना रहा कि मसीह के कामों को होते हुए देखता, परंतु उसके पास अभिलेख था कि वो था। परंतु उसने स्वयं को लोगों पर मसीह के समान प्रकट किया कि वो परमेश्वर भविष्यद्वक्ता है। वो स्त्री जब उसने उससे बातें की, कहा, जा अपने पति को बुलाकर ला, यहाँ ला। वो बोली, मेरा कोई पति नहीं है। उसने कहा, तूने ठीक कहा, तेरे 5 थे और जिसके साथ अब तू रह रही है वो तेरा पति नहीं है। उसने कहा, श्रीमान मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हम जानते हैं जब मसीह आएगा वो हमें सारी बातें बता देगा। मसीह जब आएगा तो उसका चिन्ह होगा, वही होगा जो हमें ये बातें बता देगा। और यीशु ने कहा, मैं वही हूँ जो तुझसे बोल रहा हूँ। तुरंत उसने पानी का घड़ा छोड़ा और नगर को भाग गई और नगर के लोगों को बताया, आओ एक मनुष्य को देखो, उसने जो मैंने किया मुझे बता दिया। क्या ये वही मसीहा नहीं? क्या ये वही चिन्ह नहीं जो मसीह ने हमें दिखाना था? उसने इसे एक बार फिर कभी नहीं किया उनमें से किसी के भी सामने, परंतु उस नगर के लोगों ने कहा, उस स्त्री की गवाही के कारण उन्होंने उस पर विश्वास किया कि वो मसीह था। आमीन। अब ये अन्य जाति का समय है। हमारे पास 2000 वर्षों से धर्म संकोच है, ऊंच नीच, संस्थाएं, अंदर बाहर और विवाद, फसाद, झगड़े और सब कुछ, धर्म विज्ञानी और धर्म विद्यालय और जो कुछ और भी है। अब यदि वो उन सामरियों यहूदियों को अपने पास सीधा सीधा आने देता है जिन्होंने संसार के ईश्वरों को छोड़ दिया कि परमेश्वर की सेवा करें और मसीह के आगमन की राह देखें, और मसीह ने यहूदियों पर स्वयं को इस प्रकार प्रकट किया उस दिन में, और वो अपने नियम को तोड़ नहीं सकता, ये वो पिता नहीं एक से कुछ और दूसरे से कुछ भिन्न करे, वो वही यीशु है। ठीक बात है। अब यहाँ हमारे पास 2000 वर्ष हैं, पवित्र आत्मा हम पर उतरा है, हमने अन्य भाषाएं बोली हैं, चिन्ह और आश्चर्य क्रम देखे हैं और आदि आदि, और अंतिम चिन्ह जो अब्राहम ने देखा इसके पहले की प्रतिज्ञा का पुत्र वापस आए, परमेश्वर स्वयं को शरीर में प्रकट कर रहा था जो खा सकता था, भविष्यवाणी और उन्हीं चिन्हों के द्वारा जो यीशु ने जब वो यहाँ मसीह होने के लिए था दिखाए थे। अब यीशु ने भविष्यवाणी करके कहा कि ये इसी प्रकार से होगा। और अब मित्रों, अब ये वही घड़ी है, वे यहूदी वहाँ खड़े हुए जब उन्होंने यीशु को वहाँ देखा और कहा कि ये मनुष्य है, उन्होंने कहा, उन्हें अपनी भक्त मंडली को उत्तर देना था, वे जान गए थे कि ये हो चुका था, इसलिए वे इस विषय में कुछ नहीं कर सके, उन्हें अपनी भक्त मंडली को उत्तर देना था, इसलिए उन्होंने कहा ये मनुष्य बालजबूब है। वो उन्होंने अपने अंतर मन में सोचा ये मनुष्य बालजबूब है, देखा, क्योंकि वो भविष्य बताने वाला था, एक प्रकार से मस्तिष्क का पढ़ने वाला या कुछ ऐसा ही, वो बालजबूब है। यीशु ने उनके विचारों को जान लिया, वो उनकी ओर घूमा और उसने कहा तुमने ये मेरे विरोध में बोला है, मनुष्य के पुत्र के, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, परंतु एक दिन पवित्र आत्मा आ रहा है इन्हीं चीजों को करने के लिए, और उसके विरोध में बोलना तो उसकी क्षमा इस संसार में ना आने वाले संसार में होगी। ओ भाइयों, आज रात्रि हमारे पास पेंतिकॉस्टल की आशीषें हैं, इनके लिए मैं बहुत आनंदित हूँ, आमीन। कोई संदेह नहीं, पर यहाँ भाइयों, आप लोग चर्च ऑफ गॉड, फोर स्क्वायर, असेंबली ऑफ गॉड और सारी विभिन्न कलीसियाओं से बैठे हैं, ये बहुत शानदार है, बस ऐसे ही बढ़ते रहें, न कि बस इसके साथ बने रहें, समझे, परंतु कभी नहीं सोचें अपने भाई पर कंबल आपके दूसरे भाई पर भी नहीं फैलता, दूसरी संस्था में जैसा कि जिसके पास उतना ही पवित्र आत्मा है, परमेश्वर जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें पवित्र आत्मा देता है, वैसे ही दूसरे भाई के पास भी है, आप देखें, इसलिए इसे आर पार फैलाएं, ये ठीक बात है, और आइए मिलकर आनंद करें। हमने संसार को छोड़ दिया है, हम अब्राहम के वंश के हैं, हम मसीह के वंश के हैं, प्रतिज्ञा की संतान, और यहाँ हम नीचे हैं, और अब सबसे अंतिम चीज क्या है जो उसने हमारे पिता अब्राहम को दी, वो चिन्ह सदोम के जलने के ठीक पहले, जलने के पहले और पुत्र का आना। अब प्रतिज्ञा के पुत्र के आने से पहले और सदोम के जलने के पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह में से होते हुए प्रतिज्ञा की है, ये ठीक वैसे ही होगा जैसे ये सदोम के दिनों में था। आज संसार में देखिए, संसार के इतिहास में इतने सारे मिलावट करने वाले कभी नहीं हुए जैसे कि आज हमारे यहाँ हैं, और मेरी डाक माताओं की यहाँ कैलिफोर्निया से चिल्लाहट से भरी हुई है, अखबार पढ़ते हैं, वो मिलावट क्यों, इसने कैलिफोर्निया में बदलाव कर दिया, मैं सोचता हूँ लगभग 30% एक वर्ष पहले के, दूषित ये सब जगह है, गंदगी, विद्यालय, धर्म विद्यालय, उन्हें लोगों को अपने विद्यालय से बाहर निकालना है, चुनने के लिए कठिन समय है, दूषित प्राकृतिक स्वभाव को बदल रहे हैं जैसा कि ये सदोम में था, हम इसी प्रकार देखते हैं, बिली ग्राम को देखते हैं, परमेश्वर की ओर से एक संदेशवाहक यहाँ पर सुसमाचार फैला रहा है। अब चुनी हुई कलीसिया के विषय में क्या है, उसके पास एक चिन्ह होना चाहिए, क्या ये ठीक बात नहीं, इसके पास होना ही चाहिए। आज रात्रि मैं विश्वास करता हूँ कि हम अपने सारे अविश्वास को छोड़ देंगे और उसके अंतिम दिन के चिन्ह को देखेंगे, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा दी है कि वो यहाँ पर होगा। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। क्या आज रात्रि कोई यहाँ ऐसा है जो उसे अपना बचाने वाला करके नहीं जानता, और आप सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं इसी समय और उसके पीछे चलें? क्या आप अपना हाथ उठाकर कहेंगे भाई ब्रणम मेरे लिए प्रार्थना करें, एक वास्तविक मसीह होने के लिए मैं यही करना चाहूँगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या कोई और है? परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे बहन। परमेश्वर आपको और भाई आपको आशीष दे। कोई दूसरा श्रीमान परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं सारी चीजें छोड़ देना चाहता हूँ भाई ब्रणम, मैं ये करने जा रहा हूँ। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं किसी को आघात नहीं पहुँचाना चाहता। आप देखिए, आप वचन के लिए जिम्मेदार हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, कभी कभी मुझे ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं जो मुझे कचोटती हैं, विशेषकर कभी कभी अपनी बहनों को, क्योंकि आप अनुभव करते हैं कि शैतान ने स्त्री का उपयोग किया। आरंभ में परमेश्वर ने पुरुष को चुना, शैतान ने स्त्री को। निसंदेह वो आशीषित थी कि यीशु मसीह को पृथ्वी पर लाने के लिए अंडे सेने के यंत्र बने। यीशु ने कभी भी उसे एक बार माँ नहीं कहा, उसे कभी भी नहीं था, कुछ नहीं, ये मिलीजुली मंडली है। परंतु आप मेरी सुनिए, मरियम की ओर से कोई जीवाणु नहीं आया, ये कुल मिलाकर एक सृष्टि किया हुआ था कुंवारी, परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा ने उस पर छाया की। यही कारण है कि यीशु ने उसे कभी माँ नहीं कहा, उसका उसमें कोई भाग नहीं था, कुछ नहीं, वो तो बस एक अंडा सेने के यंत्र था। जिसे परमेश्वर ने प्रयोग किया कि बालक को लाए, क्योंकि यदि उस बालक में उस स्त्री का कुछ होता, उस बालक में उस स्त्री का, आप युवा लोग समझते हैं कि मेरा क्या अर्थ है, तो वह एक प्रकार का गर्भाधान होता, एक जीवाणु स्त्री से आता उसके द्वारा, तो फिर ये सामर्थ्य परमेश्वर से एक प्रकार का मैथुन होता, ये नहीं हो सकता। परमेश्वर ने बालक की सृष्टि की, लहू और अंडे दोनों की, दोनों कोशिकाएं स्त्री और पुरुष की परमेश्वर ने सृष्टि की। यही कारण है कि वो देह जी उठी, निश्चय ही वो जी उठने वालों में पहलौटा, इसलिए उसने उसे कभी माँ नहीं कहा। उन्होंने कहा, तेरी माँ वहाँ तुझे बाहर ढूंढती फिर रही है। उसने कहा, कौन मेरी माँ है? कहा, वे जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करते हैं वही मेरी माँ है, समझे? इसलिए उसने उसे कभी एक बार भी माँ नहीं कहा, उसने उसे नारी कहा और वो वही थी। आप में से कुछ प्रिय कैथोलिक लोगों ने उसे ईश्वर बना दिया है या एक देवी, स्वर्ग की रानी, ये ठीक नहीं है। नहीं, ये ठीक नहीं है। वो एक भली स्त्री थी, जी हाँ श्रीमान, बिल्कुल ठीक, परंतु वो किसी और स्त्री से अधिक नहीं थी जिसे परमेश्वर ने प्रयोग करने के लिए चुना हो। वो एक स्त्री को किसी और चीज के लिए चुन सकता है, वो उसे किसी प्रकार से प्रयोग कर सकता है। वो बस एक अंडा सीने की यंत्र थी, वो केवल वही थी कि बीज को गर्म रखे और आदि आदि इस प्रकार से, और जीवन बालक में आया। परंतु लहू, वो हीमोग्लोबिन, हम सदा जानते हैं कि नर की ओर से आता है, और वो एक नर था, वो सृष्टि करता। वो ना तो यहूदी थी, बालक यीशु ना तो यहूदी ना ही अन्य जाति था, वो परमेश्वर था, ये ठीक बात है। परमेश्वर ने स्वयं एक देह की सृष्टि की ताकि वो उसमें रहे, वो उसका पुत्र यीशु मसीह था। वो पवित्र कुंवारी से जन्म इस मनुष्य जीवन को लेकर आया, पवित्र आत्मा के द्वारा निर्मल गर्भाधान। स्त्री का इससे कुछ भी लेना देना नहीं था, ना तो अंडा ना ही लहू कोशिका। पुरुष के पास लहू कोशिका, स्त्री के पास अंडा, इस प्रकार से वहाँ एक प्रकार की इच्छा होगी और गर्भाधान की किसी चीज को घटित करे। और इस मामले में वहाँ कुछ नहीं था सिवाय पवित्र आत्मा की छाया के, और परमेश्वर ने इस स्त्री में सृष्टि कर दी। वो मेरा बचाने वाला, उसके बिना हम सब नष्ट हो गए। अब यहाँ आप में से कुछ लोग, आप महिलाएं, आप पेंतिकोस्तल स्त्रियाँ हो सकती हैं, अनैतिक वस्त्र पहनने की दोषी, अपने बालों को कटा रही हैं और चीजें कर रही हैं। मैंने यहाँ कैलिफोर्निया में ध्यान दिया, उनमें से बहुत अधिक नहीं, या बल्कि यहाँ एरिजोना में बहुत अधिक लोग श्रृंगार नहीं करते, वो विरोध में लड़े भी थे। भाई, बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको श्रृंगार करने को मना करे। हम बस जानते हैं कि ये गलत है क्योंकि ये संसार का है, परंतु बाइबल में इस बात की आज्ञा है कि स्त्री जो अपने बाल कटाती है वो अपमानजनक व्यक्ति है। और यदि ये परमेश्वर को ऐसा दिखता है तो, और आप कहते हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा है और ऐसा कर रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ है। ये वस्त्र पहनना जो पुरुष का है, ओ प्रिय बहनों, संसार के भागी ना हो, संसार को छोड़ दो, मसीह को पकड़ लो। आप कहते हैं इससे क्या अंतर पड़ता है? धन्य है वो जो इसकी आज्ञाओं को मानता है, ताकि उसे जीवन के वृक्ष में प्रवेश करने का अधिकार हो। थोड़ा दोषी होना सारा दोषी होना है। आप अच्छी तरह जानते हैं, यदि आपके पास पवित्र आत्मा है, निश्चय ही वो आपको अच्छा ही बताएगा, वो आपको अच्छा बताएगा यदि वो पवित्र आत्मा है। अब यदि आप दोषी हैं और आज रात्रि आरंभ करना चाहते हैं और कहते हैं, भाई ब्रणम, मुझे ये अनुभव नहीं हुआ, मैं उपेक्षा कर रहा था, मैं नए सिरे से आरंभ करना चाहता हूँ, आज के बाद से मैं परमेश्वर की सेवा करने जा रहा हूँ, हाथ उठाकर कहें, भाई ब्रणम मेरे लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, ये शक्ति को लेता है, ये वास्तव में परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत सारे हाथ ठीक हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। तब यदि आप जानते हैं कि आप में कुछ है, आपको बता रहा है कि आप गलत हैं, तब आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके समीप है। परंतु जब आप वचन को स्पष्टता से सुनते हैं और तब आप वहाँ शांत बैठे रहते हैं और कहते हैं, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं जानता कि वो क्या बात कर रहा है और मैं यहाँ वचन का उल्लेख कर रहा हूँ, देखिए वहाँ कुछ गलत है जो आप में है, समझे? ये और कुछ नहीं सिवाय एक चीज के कि ये शैतान है, बस। ये परमेश्वर के विरोध में है, ये उसके नियम के विरुद्ध है और उसके वचन के विरुद्ध है। अधिक समय नहीं हुआ, मुझसे एक लोकप्रिय प्रचारक ने कहा, उसने कहा, भाई ब्रणम, मुझे अपने कमरे में बुलाया, मुझ पर हाथ रखे, कहा, आप अपनी सेवकाई को बर्बाद करने जा रहे हैं। मैंने कहा, क्या आप सदा लोगों पर जो वो करते हैं चिल्लाते हैं? कहा, आप क्यों नहीं, लोग सोचते हैं कि आप भविष्यवक्ता हैं। मैंने कहा, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। उसने कहा, भाई लोग सोचते हैं कि आप हैं, आप क्यों नहीं उन्हें आत्मिक बातें सिखाते हैं कि वे कैसे बड़ी बड़ी आत्मिक आशीषें प्राप्त कर सकते हैं और आदि आदि चीजें। मैंने कहा, मैं उन्हें आत्मिक बातें कैसे सिखा सकता हूँ जबकि वे अपना कह कह गए भी नहीं जानते, वे तो वचन की पंक्ति के साथ साधारण सभ्यता में भी नहीं है। आत्मिक बातों को तो छोड़ दो, यदि वे पृथ्वी की बातों का विश्वास नहीं करते तो वे स्वर्गीय बातों का विश्वास कैसे करेंगे? उसने कहा, भाई आप अपनी सेवकाई को नष्ट कर लेंगे। मैंने कोई सेवकाई जिसे परमेश्वर का वचन नष्ट करेगा उसे नष्ट हो जाना चाहिए। वापस वचन पर आए, ये ठीक बात है। अब यदि आप धूम्रपान कर रहे हैं और इस प्रकार से आदि आदि और दावा कर रहे हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा है, तो आपके लिए लज्जा की बात है। तुम पुरुषों, आप कहते हैं स्त्रियों को ही क्यों पकड़ते हो? तुम पुरुषों अपनी स्त्रियों को ये करने देते हो। श्रीमान, अपने आप को मसीह कहते हो, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। मैं जानता हूँ ये कठोर बात है, परंतु भाई ये छटाई का समय है। ये समय है कि पवित्र आत्मा आए और अपनी दुल्हन को ले जाए, और यदि ये उसके वचन से मेल नहीं खाता तब फिर कुछ और गड़बड़ है। तुम जो गिर गए, बुधवार रात्रि को घर पर रुके रहते हो और यहाँ आराधनालय ना आकर टेलीविजन देखते रहते हो और दूसरी रातें आराधनालयों की, सोचो आप वास्तव में कहते हो और आपको आराधनालय में आना पड़े? इसे करने के लिए आपको जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि ये नियम है जिसका आपको पालन करना है। आपको ये करना चाहिए, ऐसा करना सम्मानजनक है, और यदि आपको ये करना अच्छा नहीं लगता तो फिर कुछ गड़बड़ है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की सेवा करने के लिए प्रेम उत्पन्न करता है। अब इसके साथ, जबकि आपके सिर झुके हुए हैं, वे सब जो ये अनुभव करते हैं कि वे चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ आरंभ करें, आज रात्रि से अपने हाथों को उठाएं। अब हर कोई जो यहाँ पर है अपने हाथ उठाए, हर कोई सब तरफ। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको 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 आशीष दे। बहुत अच्छा, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। स्वर्गीय पिता, मैंने आपका वचन स्पष्टता से बोल दिया है, और साफ साफ और कटाई, जैसा कि मैं जानता हूँ कैसे, भिन्न होने के लिए नहीं। यदि यही मेरी मनोस्थिति है तो प्रभु मुझे वेदी पर जाना चाहिए, परंतु यदि मैं देखता हूँ कि मेरा भाई या बहन पुरानी छेद वाली नाव में डूब रहा है और मैं उस पर चिल्लाता और डांटता नहीं हूँ या किसी भी रीति से उन्हें उस स्थिति से बाहर नहीं लाता, तो मैं उनसे प्रेम नहीं करता। प्रभु, मैं उन्हें बाहर निकालने का यत्न कर रहा हूँ ताकि वे सुरक्षित रह सकें। ओ स्वर्ग के परमेश्वर, मैं प्रत्येक जिसने अपने हाथ ऊपर किए हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैंने देखा कि बहुत सी वे स्त्रियाँ जिन्होंने अपने बाल कटाए हुए हैं, अपने हाथों को उठाए हुए हैं, उनके अपने लिए बहुतायत के अनुग्रह के साथ यहाँ तक उन्होंने जान लिया है कि वे गलत हैं। बहुत से थे जिन्होंने नहीं किया। अब आप इस बात के न्यायी हैं, परंतु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आप उनको भी बचा लेंगे, इसे प्रदान करें। वे पुरुष जिन्होंने अपने हाथ उठाए हैं, बहुत ही अच्छे पुरुष, अपनी अपनी पत्नियों के साथ बैठे हैं और आदि आदि, अपने हाथ उठाए हुए हैं। बूढ़े लोगों ने अपने हाथ उठाए हुए हैं। अब पिता, हम संसार को छोड़ते हैं और संसार की चीजों को, या फिर हम आपकी सेवा नहीं कर सकते। मैं प्रार्थना करता हूँ आज रात्रि आप स्वयं को इस प्रकार से प्रकट करेंगे कि लोग देखेंगे कि जो वचन बोला गया, मनुष्य कुछ भी कह सकते हैं, परंतु जब परमेश्वर आकर अपने वचन की पुष्टि करता है, सिद्ध करता है कि ये उसका वचन है, तो फिर हमारे पास कोई बहाना नहीं बचा। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज रात्रि आप इसे प्रदान करेंगे, और जैसे ही ये लोग, हो सकता है इनमें से बहुत से पापी हैं, बहुतों ने पापियों के समान अपने हाथ उठाए हैं, और पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे ही ये लोग प्रकटीकरण को देखें और इसका विश्वास कि आज रात्रि आप करेंगे, अपने को प्रकट करेंगे कि यहाँ अंत है, आशा किया हुआ पुत्र जल्द ही अब्राहम के वंश पर पहुँचेगा और सादोम का जलाया जाना। किसी दिन इस फीनिक्स की एक भी चट्टान एक दूसरे के ऊपर नहीं छूटेगी, घाटी साफ हो जाएगी। नगर में आज रात्रि जहाँ व्यभिचार, शराब पीना, धूम्रपान करती हुई माताएं, पुत्रियां, नाचना मटकना, पुरुषों अनैतिकता से जी रहे हैं, इस नगर का पाप, ओ इस नगर का पाप। परंतु इसमें से होते हुए देखता और सोचता हूँ, कोशिश करने का भी क्या लाभ है। परंतु जब मैं उधर से होते हुए देखता हूँ और देखता हूँ, यहाँ एक छोटी ज्योति है और वहाँ है पवित्र मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। वे सब जो पापों के लिए रोते और चिल्लाते हैं, जो नगर के बीच में होते हैं, स्वर्गदूत को अधिकार दिया गया उन्हें मोहर कर दे, चिन्हित कर दे, और वे थे जो कि नष्ट नहीं किए जाएंगे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ बहुत से होंगे जो कि पवित्र मसीह ही होंगे, बोले गए पुत्र, जो इन लोगों में से बाहर बुलाए जाने से नहीं डरते। परमेश्वर, इस दिन में हम वो बात बोलें जो सही है, और एक न्याय का दिन आ रहा है, तब उनके पास कोई बहाना ना होगा। आज रात्रि के इस संदेश के लिए जो पर्दे पर आकाश की छतरी पर दिखाया जाएगा, और हम सब उत्तर देंगे। इसलिए पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप संसार की किसी भी चीज से इनके हृदय का खतरा कर दें, ताकि वे इस वर्तमान संसार में धार्मिक जीवन व्यतीत करें। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आपको रोके रखने के लिए खेद है। मैंने वास्तव में देर कर दी और मैं नहीं, मुझे बाहर हो जाना चाहिए था। अंत में हर रात्रि मैं लगभग अधिक से अधिक 10 बजे के बाहर हो गया। आज रात्रि मैं 9:30 बजे बाहर होना चाहता था, मैंने ये नहीं किया। अब जरा एक मिनट रखूं उस मोहर को जो मैंने कही। अब वास्तव में मैं प्रचारक नहीं हूँ, ये बात कोई भी जानता है। मेरे पास शिक्षा नहीं है और मैं अपने कैंटिकियन शब्द हिज हैंड और टोट और फैच और कैरी या वे थार शब्दों का उपयोग करता हूँ। आप जानते हैं कि मैं इस प्रकार का प्रचारक नहीं हूँ, मेरी शिक्षा नहीं की, परंतु मैं एक मसीही हूँ। प्रभु यीशु ने मुझे पाप से बचाया और मैं ये जानता हूँ, और उसने मुझे दूसरा वचन दिया है कि पुष्टि करे। थोड़ा मैं करना जानता हूँ, केवल ये चीज कि मैं अपना व्यक्तिगत अनुवाद करने का यत्न नहीं करता। मैं बस इसे पढ़ता हूँ और जो भी ये कहता है वही बात मैं कहता हूँ, समझे? बस कुल मिलाकर ये जानता हूँ। देखा, अब यदि इसका गलत अनुवाद हो गया तो मैं नहीं जानता। मैं ये कह रहा हूँ जिस प्रकार इसका यहाँ अनुवाद है, समझे, और वो ठीक इसके पीछे है और इसका समर्थन करता है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह जल्द आ रहा है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। मैं विश्वास करता हूँ कि उसने कहा कि थोड़ी देर और संसार व्यवस्था हमें ना देखेगा और अधिक ना देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे, तुम कलीसिया, क्योंकि मैं व्यक्तिगत सरनाम, मैं तुम्हारे संग होऊंगा और तुम्हारे अंदर संसार के अंत तक। वे काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे। आप इसका विश्वास करते हो? हम पाते हैं कि उसने कौन से कार्य किए हैं, कैसे उसने स्वयं को प्रकट किया। आज रात्रि मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इस कलीसिया को लेगा। अब कोई मतलब नहीं कि वो मुझ पर कितना अभिषेक देगा, उसे आपको भी अभिषेक करना है, समझे। कोई मतलब नहीं कि पवित्र आत्मा यहाँ कितना बोलना चाह रहा है, इसके पास यहाँ कुछ होना चाहिए कि इसको सुने। एक दिन यीशु लोगों के झुंड के पास से निकला और वे चिल्ला रहे थे, रब्बी रब्बी, आपको यहाँ पाकर हमें प्रसन्नता हुई है, और आदि आदि। यीशु बस वहाँ से चला गया और वहाँ एक साधारण स्त्री थी जो आसपास से आई और उसके वस्त्र की छोर को छू लिया और वापस जाकर बैठ गई। यीशु ने रुक कर कहा, मुझे किसने छुआ? क्यों? शमौन पतरस ने उससे कहा, जैसे कि उसने उसे डांटा, उसने कहा, अच्छा तू इस तरह की बात कैसे कह सकता है, हर कोई तुझे छू रहा है। उसने कहा, परंतु मुझे लगा कि मुझे दुर्बलता आई है, गुण जो कि सामर्थ है मुझ में से निकली है। उसने भक्त मंडली में चारों ओर देखा कि वहाँ कोई है जिसने उस पर विश्वास किया है। कोई मतलब नहीं, वहाँ पर सैकड़ों उपस्थित थे, परंतु किसी ने वहाँ उस पर विश्वास किया। उसने उस साधारण स्त्री को पाया, उसे उसके लहू बहने के विषय में बताया कि वो रुक गया है और वो चंगी हो गई। क्या ये ठीक बात है? आगे बढ़ गया, समझे, वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। अब हमने प्रार्थना पत्र दे दिए हैं, पिछली रात्रि हमने उन आधों को दे दिए हैं, आधे आज रात्रि। पिछली रात्रि क्या हमने एक से आरंभ किया था? क्या पिछली रात्रि हमने पहले 15 या 20 आरंभ किए थे, एक से फिर आदि आदि? ये क्या है? क्या कहा? 1 से 20, ठीक है। उनमें से बहुत से आज रात्रि यहाँ हैं, आइए हम कुछ पीछे दे दें, आइए आरंभ करें। देखते हैं, हमारे पास 15 मिनट हैं, हम 15 कार्ड दे दें। आइए देखते हैं, ये 85 से 100 तक, आइए 85 से आरंभ करते हैं और 100 तक। किसके पास प्रार्थना पत्र 85 है, अपना हाथ उठाएं। 85, वो महिला पीछे, बहन यहाँ आ जाएं। 86, किसके पास है? 86 है, ठीक है, यही है। 87, किसी ने अपना हाथ उठाया है, ये पुरुष 87। 88, 89, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 95 जी हाँ 96 97 96। मैंने इसे खड़े होते हुए नहीं देखा 96। अब यदि आपके पास अपना कार्ड है आइए समझे 97 98 99 100। ठीक है, जबकि ये लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करीब 8 नहीं है। अब सुनिए ये सत्य है, अपने जीवन में पापों को लिए हुए यहाँ नहीं आए। अच्छा है कि आप परमेश्वर से प्रायश्चित करते हुए, परंतु यदि आपने अपने पापों को मान लिया है तो आगे आएं। वहाँ कितनों के पास प्रार्थना पत्र नहीं है और आप चाहते हैं कि यीशु आपको चंगा करे, अपने हाथ उठाएं। कितने आप में से विश्वास करेंगे यदि यीशु करेगा, यदि वो कितने इस बात का विश्वास करते हैं? ध्यान दें, मेरे पीछे जो सेवक गण हैं, मैं उनसे कहने जा रहा हूँ, भाइयों क्या ये सुसमाचार के सेवक होने के नाते ये सत्य है? हम विश्वास करते हैं कि बाइबल नया नियम इब्रानी की पुस्तक कहती है कि वो इस समय महायाजक है, एक महायाजक जिसे अपनी निर्बलता की संवेदनाओं से छुआ जा सकता है। क्या ये ठीक बात है भाइयों? कितने इस बात को जानते हैं कि बाइबल कहती है कि एक महायाजक, अच्छा यदि वो महायाजक है जिसे अब हम अपनी निर्बलताओं की भावनाओं से छू सकते हैं, अब उसने कैसे किया? वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। जब किसी ने उसे छुआ तो उसने कैसा व्यवहार किया उनकी निर्बलता की भावनाओं के साथ? वो छोटी स्त्री बहते लहू के साथ जिसने उसे छुआ, क्योंकि उसे आवश्यकता थी कि उसे छुए, वो घूमा जब तक उसने उसे ढूंढ नहीं लिया, देखता रहा, उसे बुलाया। क्या ये ठीक बात है भाइयों? अब यदि वो यही महायाजक है तो उसे फिर वैसा ही व्यवहार करना चाहिए क्योंकि वो महायाजक है, वो है। क्या ये ठीक बात है भाई? वो उसी प्रकार व्यवहार करेगा। अब आपको प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं है, नहीं आपको प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल एक चीज आपको परमेश्वर में विश्वास करने की आवश्यकता है। आपके पास विश्वास है, बस विश्वास करें अपने पूरे हृदय से कि यीशु मसीह बीमारों और अपाहिजों को चंगा करता है, निश्चय ही वो करेगा। आइए अब एक क्षण के लिए अपने सिरों को फिर से प्रार्थना में झुकाएं। इसके पहले कुछ कहा या किया जाए, अब मैं ये नहीं कहता कि वो करेगा ही, मैं विश्वास करता हूँ वो करेगा, परंतु मैं विश्वास करता हूँ, मेरा भरोसा है कि वो करेगा। अब यदि वो करता है तो आप में से कितने विश्वास करेंगे? अपने हाथों को उठाएं, होने पाए वो प्रदान करे, ये मेरी प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता, अब मैंने वही कहा जो आपका वचन कहता है, सब कुछ छोड़ दो कि आपके पीछे चला जाए। वे जो सब कुछ छोड़ते हैं आपको देखना ही है, और कोई मतलब नहीं कि आप क्या करेंगे। वे जो पाप को नहीं छोड़ेंगे और पीछे हों, वे कभी भी समझने के योग्य ना होंगे। वे जो पाप को छोड़ देते हैं, अविश्वास को, हम जानते हैं कि पाप अविश्वास है। कोई मतलब नहीं हम कितना पवित्र जीवन बिताते हैं, हम कुल क्या करते हैं, यदि हम तब भी अविश्वास करते हैं हम पापी हैं। बाइबल कहती है वो जो विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहरता। इसलिए हम जानते हैं कि हमें हर वचन का विश्वास करना चाहिए जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, यही हमारी प्रतिदिन की रोटी होनी चाहिए। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे वचन से, मैंने वचन से उल्लेख दिया है आज रात्रि, इन अंत के दिनों में आपकी प्रतिज्ञाएं, हम इन अंत के दिनों में और क्या देखेंगे प्रभु? यदि यही सत्य है तो फिर इन शब्दों की पुष्टि चिन्हों को भेज कर दें, इसे ग्रहण करें। मैं अपने आप को, वचन को और लोगों को आपको समर्पित करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आप हृदयों का खतना करेंगे कि पूरे हृदय से विश्वास करें, और विशेषकर ये जो प्रार्थना पंक्ति में आने वाले हैं, और तब लोग मसीहा को देखें। यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, आज रात्रि हमारे साथ है, वो इस कलीसिया में है, चुनी हुई कलीसिया, बाहर बुलाए गए अब्राहम के वंश, राजकीय प्रतिज्ञा के द्वारा, इसे यीशु नाम में प्रदान करें, आमीन। अब एक क्षण के लिए मुझे देखने दें, अब हम अपना समय लेने जा रहे हैं कुछ मिनटों के लिए, बस थोड़ा सा, लगभग 10 मिनट। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? क्या आप इन बातों का जो मैंने पढ़ी विश्वास करते हैं? आज रात्रि इस वचन में से सत्य है। क्या विश्वास करते हैं कि जब यीशु पृथ्वी पर था उसने ये काम किए? क्या विश्वास करते हैं उसने इसकी प्रतिज्ञा दी है? क्या विश्वास करते हैं कि हम अंत के दिनों में हैं? अब ये उसकी प्रतिज्ञा है, उसे इसे जीवित रखना है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो चाहे तुम जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब इसका आपका उद्देश्य और विषय सही होना चाहिए। आपको अपने पूरे हृदय से विश्वास करना है। अब मैं विश्वास नहीं करता जितने लोग प्रार्थना पंक्ति में हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। हम अपरिचित हैं, मैं अपरिचित हूँ, यहाँ सब अपरिचित हैं। आप जितने ये जानते हैं कि मैं आपके विषय में कुछ नहीं जानता, जो इस छोटी सी प्रार्थना पंक्ति में है, अपने हाथ उठाएं, जानते हैं कि मैं आपके विषय में कुछ नहीं जानता, ठीक है? वहाँ बाहर जो जानते हैं कि मैं आपको नहीं जानता या आपके विषय में कुछ नहीं जानता, अपने हाथ उठाएं, देखें आप वही हैं। तो फिर ये छिपा हुआ मामला यहाँ एक प्रार्थना पत्र के साथ है, दूसरा बिना प्रार्थना। प्रार्थना पत्र कुछ नहीं, केवल एक कार्ड नंबर के साथ, बस आपको एक नंबर दिया गया है, लड़का आकर उन्हें मिला देता है और जो भी कार्ड चाहता है ले सकता है, और किसी को नहीं जानता कि कहाँ, वो नहीं जानेगा। यदि कार्ड आपस में मिला दिए गए हैं, वो नहीं जानता कि प्रार्थना पंक्ति में कौन आएगा, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते। बहुत सी बार हम उन्हें नीचे से लेते हैं। जब मैंने पहले आरंभ किया था, हमारा एक व्यक्ति था जो प्रार्थना का कार्ड बेचता था। किसी ने कहा, मैं अपनी पत्नी को पंक्ति में खड़ा करने के लिए $500 दूंगा, समझे। मैं अपने पुत्र मैंने अपने पुत्र को लिया था, मैंने कहा पुत्र लोगों को स्पष्ट कर दो ताकि वे जान जाएं कि तुम प्रार्थना पत्र नहीं बेचोगे, उनके सामने जाकर प्रार्थना पत्रों को मिला दो इस प्रकार से, तब जो चाहे उसे दे दो और पुत्र इसे छोड़, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि मैं कहां से बुलाने जा रहा हूं जब तक मैं वहां ना पहुंचूं। कितनों ने ये सभा समय समय पर देखी है, हर बार मैं बदलता हूं, मैं इधर उधर से बदलता हूं, और फिर इसके अलावा जहां एक प्रचार मंच पर चंगा हुआ तो वहां दर्जनों बुलाते हैं। ये ठीक बात है बिना प्रार्थना पत्रों के, इसलिए ये अचूक है कि प्रभु यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है। क्या आप सब छोड़ देंगे कि उसके पीछे हो लें? क्या आप अपना अविश्वास छोड़ना चाहते हैं कि चंगाई के लिए उसके पीछे चलें? अपनी सारी सांसारिक चीजें छोड़ दें कि उसके पीछे पवित्रताई में चलें और उसके लिए बढ़ें? अब इसे करें। मैं नहीं कहता कि वो ये करेगा, यदि वो ये करता है तब आप जान जाएंगे। ये स्त्री यहाँ पर खड़ी हुई है, ये फिर वही दृश्य है जैसे कि मैंने बीती रात में संत यूहन्ना 4, यहाँ एक पुरुष और महिला जीवन में पहली बार मिल रहे हैं। ये एक छोटी सी तिपाई थी, यदि आप कभी वहाँ सामरिया में थे, बाहर सुखार पर एक छोटा कुआं और एक और दाखलता का लंबा चौड़ा दृश्य एक और है इस प्रकार से, जहाँ स्त्री ने बैठकर यीशु से बातें की, एक पुरुष महिला पहली बार मिले और उसने उस स्त्री को बताया कि परेशानी कहाँ पर थी। उसकी परेशानी उसका पाप से भरा होना था। ये वो हो सकती है, वो पापी हो सकती है, वो ढोंगी हो सकती है, वो संत हो सकती है, वो अपनी देह के लिए चंगाई चाह सकती है, वो किसी और के लिए चंगाई चाहने वाली हो सकती है, वो वित्तीय संबंधित हो सकती है। मैं नहीं जानता वो यहाँ किस लिए है, मैं आपको नहीं बता सकता। वो बस यहाँ एक स्त्री के समान खड़ी है, बस यही है, ये सत्य है, हम कभी नहीं मिले। परंतु यदि प्रभु यीशु यहाँ आएगा, अब यदि ये बीमार है तो इसे चंगा होने को मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता जो परमेश्वर पहले कर चुका। अब केवल एक चीज, क्या हो यदि यीशु यहाँ पर ये सूट पहनकर खड़ा हो और ये यीशु के पास आकर कहे, यीशु क्या आप मुझे चंगा करेंगे? भाई वो कहेगा, मेरे बालक मैंने ये पहले ही कर दिया है, तेरे पापों के लिए मैं घायल हुआ था, मेरे मार खाने के द्वारा तुम चंगे हुए। क्या ये ठीक बात है? ये पूरा समाप्त किया हुआ कार्य है। आप कहते हैं, यीशु क्या आप मुझे चंगा करेंगे, क्या आप मुझे बचा लेंगे? ये प्रश्न है ही नहीं, वो पहले ही ये कर चुका है। प्रभु यीशु मैं आपके छुटकारे को स्वीकार करता हूँ, मैं एक पापी हूँ। देखा, आप वहाँ पहले ही बच गए थे, आप वहाँ पहले ही चंगे हो गए थे, आपने बस स्वीकार कर लिया है। विश्वास के द्वारा आप बचाए गए हैं, विश्वास के द्वारा आप अपना उद्धार स्वीकार करते हैं। और कोई आता है और बताता है कि उनके पास चंगाई की सामर्थ है और वे आपको चंगा कर सकते हैं, आप इस बात में स्पष्ट रहें, क्योंकि ये नहीं है, चंगाई की सामर्थ मसीह में है, ये पहले ही समाप्त किया हुआ कार्य है। यदि एक मनुष्य आपको बताता है कि परमेश्वर ने उसे आपके पापों को क्षमा करने का अधिकार दिया है और ये करने के लिए आप इसका कभी भी विश्वास ना करें, वे पहले ही क्षमा हो चुके हैं। आज रात्रि यीशु यहाँ पर खड़ा है केवल एक बात कि वो इसकी घोषणा करेगा कि वो परमेश्वर का पुत्र था। क्या हो यदि वो था, क्या हो यदि अब मेरे हाथ कीलों के निशान से भरे हुए हों और उनसे लहू बह रहा हो और यहाँ सारे में कांटे हों, तो ये इसे यीशु नहीं बना देगा, ये मेरा मांस होगा। और हम जानते हैं कि देह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठी है और जब वो आता है तो समय और ना होगा, ये ठीक बात है जब यीशु उतरता है, इसका कुल मिलाकर यही है। परंतु वो यहाँ आत्मा के रूप में है और उसका जीवन आप में और मुझ में कि आपको और मुझको विश्वास दे। अब इधर देखिए ये माइक्रोफोन माइक, यदि यहाँ कोई जीवित आवाज इसमें बोलने के लिए ना होती तो ये पूरी रीति से शांत होता, क्या ये ठीक बात है? अब देखिए और ध्यान से सुनिए ताकि आप इसमें चूके ना, ये मामला यदि परमेश्वर इसे करेगा तो ये तय हो जाएगा। अब ये माइक अपने में नहीं बोल सकता क्योंकि इसमें बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्या ये ठीक बात है? अब केवल एक ही विधि कि ये माइक बोल सके कि कोई इसमें बोले। अब मैं यहाँ हूँ, मैं इस महिला को नहीं जानता, इसे कभी नहीं देखा, मेरा ये हाथ परमेश्वर के सामने है और इसने अपना हाथ उठाया है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। मैं इसके विषय में कुछ नहीं जानता जब तक कुछ यहाँ ना आए और कहे कि क्या गड़बड़ है, मैं भी शांत हूँ क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता, परमेश्वर जानता है कि ये सही बात है, समझे? कुछ होना ही चाहिए जो बोले। अब आप अपना निर्णय ले सकते हैं, यदि आप चाहें तो फिलिपुस के समान उसने कहा या नतेल ने कहा, तू मसीह है, जीते परमेश्वर का पुत्र, तू इज़राइल का राजा है, देखा? या आप वो हो सकते हैं जो कहें ये बालजबूब है। आप देखिए आज रात्रि वे कहाँ हैं, आश्चर्य नहीं, आज रात्रि नतेल कहाँ है, अमरणहार, समझे? अपना निर्णय लें, ये आप पर है, समझे? परंतु अब मैं कह रहा हूँ कि प्रतीक्षा कर रहा हूँ, यदि वो मुझे अभिषेक दे, यदि वो अभिषेक नहीं देता है तो फिर मित्रों मैं एक ही काम कर सकता हूँ कि क्षमा मांगू कि आज रात्रि वो मुझसे नहीं मिला, और फिर हम बस हाथ रखेंगे, बीमार लोगों पर और उनके लिए प्रार्थना करेंगे और आशीर्वाद मांगेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वेदी की बुलाहट देंगे और घर जाएं। बस यही कर सकते हैं, मैं फिर यही करना जानता हूं। परंतु यदि वो आता है तब मैं सोचता हूं कि आप में से प्रत्येक जिसने अपने हाथ उठाए हैं और मसीह को देखना चाहते हैं, मैं सोचता हूं कि ये आपका कर्तव्य है कि जैसे ही ये समाप्त हो यहां आकर अपने घुटने टिका लें और कहें, प्रभु यीशु अब मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। क्योंकि यदि मैं झूठा हूँ तो वो झूठे को कभी प्रमाणित नहीं करेगा, उसका पाप से कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर नहीं करेगा। परंतु यदि मैंने आपको सत्य बताया है तो वो अपने वचन के द्वारा बाध्य है कि सिद्ध करे कि ये सत्य है। परमेश्वर इसे प्रदान करे। अब श्रद्धा में रहें, समझे, भक्त मंडली में हर कहीं आदर पूर्वक रहें। महिला, मैं आपसे एक मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? कुछ ऐसे ही मैं अनुभव करता हूँ कि अभिषेक मुझ पर है। मैं आपको नहीं जानता और इसलिए ये है। अब मैं केवल एक चीज करना चाहता हूँ, यदि मैं आपसे कुछ पूछूं और आप हाँ या ना कहें, समझे, जिस कारण मैं ये कर रहा हूँ, आइए हम कुछ लें ताकि ये सके। हम पवित्र वचन को कभी नहीं छोड़ना चाहते, वचन में टिके रहना चाहते हैं, तब हम जानते हैं कि हम सही हैं। अब उदाहरण के लिए यीशु, अब वो दूसरे देश में था और वो यरोही के मार्ग पर था जो कि सीधा पहाड़ के नीचे है, परंतु उसे सामरिया होकर जाना था इस मार्ग से। अब पिता ने उसे वहाँ भेजा था। यीशु ने कहा अगले अध्याय, पांचवें अध्याय में, जब उसने एक पुरुष को चंगा किया जिसे किसी प्रकार का रोग था, वहाँ हजारों लोग पड़े थे, लंगड़ों की भीड़, अंधे, लंगड़े, मुरझाए हुए, जल के हिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और यीशु आया, उसने एक मनुष्य को देखा जिसे टिकने वाली बीमारी थी, हो सकता है टीबी या प्रोस्टेट की परेशानी या कुछ, और उसने उसे चंगा कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि वो वहाँ है, वो मार्ग में है। वहाँ गया, बाकी सारी भीड़ को छोड़ दिया, सीधा गया। हम जानते हैं कि ये सत्य है, ये ठीक बात है। उन्होंने पाया, यहूदियों ने उसे पाया और उससे प्रश्न किया। वे आज रात्रि फिर उससे प्रश्न करेंगे, उसने ये क्यों किया, यदि उसने सब पर तरस खाया और सबसे प्रेम किया, उसने क्यों सारे लंगड़े, अंधों, अपाहिजों, मुरझाएओं को वहीं पड़े छोड़ दिया, बस एक मनुष्य को चंगा किया जो कि बहुत बीमार नहीं था, वो चीज से मरने वाला नहीं था, ये उसे 38 वर्षों से था, वो वहाँ पड़ा रहा था, वो चल सकता था। जब मैं तालाब पर जाता हूँ, कोई मुझसे पहले चला जाता है, कोई मुझसे आगे बढ़ जाता है, परंतु वो एक मनुष्य को स्वस्थ कर देता है। और जब उससे उसके शब्दों पर प्रश्न किया गया, संत यूहन्ना 5:19, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, परंतु वो जो पिता को करते देखता है, पुत्र भी उसे उसी प्रकार करता है। इसलिए जब वो सामरिया में गया तो प्रभु ने उसकी वहाँ अगुवाई की। अब प्रभु ने मेरी अगुवाई की है, उसका दास फिनिक्स में आज रात्रि उसने मेरी यहाँ अगुवाई की है, अब मैं यहाँ हूँ और उसके दावों को कर रहा हूँ। अब जब यीशु सामरिया में गया, पहली चीज जो उसने पाई, एक स्त्री उसके सामने आई, वो उससे बातें करता रहा जब तक उसकी दशा को मालूम नहीं कर लिया। जब उसने उसे बताया, उसने तुरंत उसे पहचान लिया, या तो ये भविष्यद्वक्ता है या ये प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह है। उसने कहा वो मसीह है, देखा। इसलिए हम जानते हैं उन दिनों में भविष्यद्वक्ता नहीं हुआ करते थे, आज ये मसीह है। परमेश्वर ने बीते दिनों में हमारे पूर्वजों से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की, इन अंत के दिनों में अपने पुत्र मसीह यीशु के द्वारा, जो कि पवित्र आत्मा हम में है। अब ये यहाँ पर है, आप ये पहचानती हैं। मैं आपसे एक मसीह दूसरे मसीह से जैसे पूछता हूँ, जैसे ही मैंने उधर को देखा कुछ हुआ, आप बता सकती हैं, एक मिठास, नम्र आत्मा, क्या ठीक बात है? यदि है तो आप अपना हाथ उठाएं ताकि लोग देखेंगे, समझे। अब ठीक इस समय एक स्त्री को देख रहा हूँ, यदि आप उसे देख सकते हैं, देखिए, एक नीली हरी ज्योति उस महिला के चारों ओर घूम रही है। अब वो मुझसे दूर जा रही है, नहीं, ये कोई और है, ये दूसरी स्त्री है, ये आप एक स्त्री के लिए प्रार्थना कर रही हैं, किसी और के लिए, ये आपकी सास है, उनकी किडनी की स्थिति, और उनके पास केवल एक ही किडनी है, और डरी हुई है कि ये कैंसर है, और इसलिए आप यहाँ पर हैं कि मुझसे उनके लिए प्रार्थना करने को कहें। ये यहोवा यूं कहता है, आप विश्वास करती हैं, जाइए, आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करें और वे उसे नहीं ले जाएंगे। अविश्वास ना करना, ये छोटी चीज जो आपके हाथ में है, इसे उन पर रख देना। आप अपने सारे हृदय से विश्वास करते हैं? आप कैसे हैं? हम भी एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं, ये हमारी पहली भेंट है, और यदि परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह अपना आत्मा भेजा। यीशु ने कहा, जहाँ कहीं दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे तो मैं उनके मध्य में होऊंगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है, क्या नहीं? अब वो अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकता। केवल ये है कि हम अपने विश्वास में इतने ढीले हैं, यहाँ तक कि हम उसे देखने में असफल हो जाते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता पृथ्वी पर भेजे। देखिए, लोग अपनी बाइबल नहीं पढ़ेंगे, वे नहीं पढ़ते, वे बस चलते रहते हैं। परमेश्वर सदा उनके पास चिन्ह भेजता है और अक्सर भविष्यद्वक्ता एक चिन्ह है, समझे? और आज पवित्र आत्मा हमारा चिन्ह है, क्योंकि वो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता हमारे द्वारा चलाया जाता है। वो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता अंत के दिनों का एक चिन्ह है। अब आपको नहीं जानते हुए और आपके बारे में कुछ नहीं जानता, परंतु यदि प्रभु यीशु मसीह, जो कि मैंने कहा बाइबल से मेरे द्वारा बोलेगा और मुझे बताएगा कि यहाँ किस लिए खड़े हैं, क्या इस बात से आप विश्वास करेंगे? क्या ये भक्त मंडली से विश्वास करवा लेगा? अब पिता सुन रहा है, मैं जानता हूँ। अब तंत्रिका तंत्र के रोगी हैं, ये ठीक बात है, अपना हाथ उठाएं। अब किसी ने बाहर सोचा कि मैंने अनुमान लगाया है। भाई, अब आप इसे नहीं छिपा सकते, ये अब यहाँ आ रहा है, समझे? मैंने पकड़ लिया। क्या आप ये विश्वास नहीं करते? क्या आपने कभी विश्वास नहीं किया? यही पाप है, ये अविश्वास है। परमेश्वर आपको इसके लिए दोषी ठहराएगा। आपको न्याय के दिन इसका उत्तर देना होगा। मुझे उसे पुकारना चाहिए, परंतु अधिकांश में परेशानी में पड़ जाता हूँ। मैं नहीं जानता आपको क्या पकड़े हुए है। एक क्षण, जी हाँ, यहाँ वो छाया है, ये अधीरता, निर्बलता, इसके द्वारा आप निर्बल हो गए हैं, सब कुछ गड़बड़, ये बहुत समय से है, ये ठीक बात है। आपके साथ कुछ और भी परेशानी है, आप किसी और के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। आपका पति अस्पताल में है पेट की परेशानी से, श्रीमती गुड्स हाल ही में ऑपरेशन हुआ है। आप अपने सारे हृदय से विश्वास करते हुए घर जाएं और ये उस पर रख दें और वो चंगा हो जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या वो आपको जानता है? देखा, निश्चय ही वो जानता है। मैं देखता हूँ ये, क्या आप अनुभव नहीं करते कि वही यीशु जो गलील में चला आज रात्रि यहाँ पर है? क्या आप अनुभव नहीं कर सकते? मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सोचता हूँ कि वो स्त्री थी जिसके लिए प्रार्थना की गई। वहाँ क्या ठीक बात है? क्या कोई भी लोग कभी उस स्त्री को जानते हैं? कोई उस स्त्री को जानता है? अपना हाथ उठाएं। क्या वे बातें सही थी? अपना हाथ हिलाएं यदि ये सही है। ये बहुत अच्छा। आइए, अंग्रेजी में बात करें, ये ठीक है। इंडियन है, मैं आपका आदर करता हूँ। एक वास्तविक मूल अमेरिकन, मैं नहीं सोचता, मैं एक अकेला पुरुष, मैं निर्णय नहीं ले सकता, मैं केवल अपना एक निर्णय लेता हूँ। मैं नहीं सोचता कि आप वास्तविक व्यवहार नहीं करते, आप जानते हैं कि मैं नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि बजाय करोड़ों अरबों रुपए विदेश भेजने के, उन्हें अपने लोगों की चिंता करनी चाहिए। ठीक ठीक है, बिल्कुल ठीक। मेरा हृदय सदा आप लोगों के लिए होता है। मैं वहीं आरक्षित क्षेत्र सैन कार्प में था, अधिक समय नहीं हुआ, कैसे वहाँ पवित्र आत्मा ने व्यवहार किया, उन बेचारे लोगों को चंगा किया। श्रीमान, मैं आपके लिए अपरिचित हूँ, मैं आपको नहीं जानता, मैंने अपने जीवन में आपको कभी नहीं देखा, हम बिल्कुल अनजान हैं। ये ठीक बात है, हम दो नागरिक हैं, मैं एक एंग्लो सैक्सन हूँ, आप एक इंडियन। मेरे अंदर थोड़ा सा लहू मेरी माँ के द्वारा है, मेरी दादी चोरकी थी, मुझे इसका गर्व है, ठीक है। परंतु मेरे भाई के समान मैं कुछ नहीं करूँगा कि आपको हानि पहुँचे, मैं केवल आपकी सहायता करूँगा। इंडियन एक जाति हुआ करती थी, यदि उनके मध्य में एक होता जो अनुमान लगाकर बताता कि शिकार कहाँ मिलेगा, तो वो उनके बीच में एक भविष्यद्वक्ता हो जाता था। और वे, परंतु यदि वो कुछ बताए जो कि ठीक नहीं था, तो उसे इसके लिए मरना पड़ता, उसे अवश्य ही, ये ठीक बात है, उनके अंदर ऊपर नीचे नहीं था। यदि परमेश्वर परमेश्वर है तो राष्ट्र आपसे दुर्व्यवहार कर सकता है, परंतु परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसने आपके लिए अपने पुत्र को भेजा। मैंने अभी अभी देखा कि क्या घटित हुआ। आप हाल ही में अस्पताल से आए हैं, आप यहाँ प्रार्थना करवाने के लिए आए हैं, आपको पेट की परेशानी है और ऑपरेशन के लिए गए थे, ये यहोवा यूं कहता है, यहाँ इधर आइए। स्वर्गीय पिता, मैं इस पेट के रोग को दोषी ठहराता हूँ। शैतान, तू डॉक्टर की आंख से छिप गया, परंतु तू परमेश्वर से नहीं छिप सकता। यीशु मसीह के नाम से इसमें से बाहर निकल जा, आमीन। अब इस विषय में चिंता ना करें, जाइए और ठीक रहें। आप विश्वास करते हैं? आप कैसे हैं? ये महिला ठीक यहाँ बैठी हुई प्रार्थना कर रही है, इस युवा स्त्री के ठीक पीछे जो सामने बैठी है, मूत्राशय की परेशानी है। आप विश्वास करती हैं यीशु आपको चंगा करने जा रहा है? महिला, ये बात मुझे बताएं, इसने किसे छुआ? ये मुझसे 20 फुट दूर है, इसने महायाजक को छुआ, ये ठीक बात है, जिसे कि निर्बलता की दशा में छुआ जा सकता है। क्या आप इसका विश्वास नहीं करते? महिला, आप विश्वास करती हैं? आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आपकी परेशानी क्या है? ये आप नहीं जिसे परेशानी है, ये आपकी बहन है, उसे कैंसर है, ये ठीक बात है, क्या नहीं? विश्वास करें, संदेह ना करें, उस रुमाल को लें जो आपके पास उसके लिए है और उस पर रख दें, अपने सारे हृदय से विश्वास करें, वो इससे बाहर आ जाएगी। आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करेंगी? आगे बढ़ें। ओ, विश्वास करें। क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? इसने प्रचार मंच छोड़ दिया है, भक्त मंडली में है। ये दुबली पतली सी स्त्री वहाँ पीछे बैठी है, उसे टीवी है, वहाँ पीछे बैठी प्रार्थना कर रही है। आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर देगा? आप करती हैं? वो छोटी महिला सीधे सीधे देख रही है, वहाँ पीछे महिला जो पीछे बैठी है, अपना हाथ उठाएं। वो व्यक्ति जो घूमा ठीक उसके पीछे, अपने सारे हृदय से विश्वास करें। जी हाँ, छोटी बालकटी सी स्त्री, ठीक है, इसका विश्वास करें, ये हो गया। उसने वहाँ पीछे, उसने किसे छुआ? मैं चुनौती देता हूँ कि इसका विश्वास करें। महिला, आपके विषय में क्या है? आप विश्वास करती हैं कि आपकी पीठ की परेशानी आपको छोड़कर चली गई? जब से आप यहाँ खड़ी हैं, तो फिर आगे बढ़ें। बस कुल मिलाकर आपको यही करना है, आप में जो कुछ है उससे विश्वास करें। आपको भी वही चीज है, इसलिए यदि आप बस विश्वास करें, बस आगे बढ़ते हुए कहते रहें, धन्यवाद प्रभु, अच्छा कर दिया। अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। आप डरे हुए हैं कि गठिया रोग से आप अपाहिज हो जाएंगे, क्या आप नहीं? इसलिए यदि आप विश्वास करें, अपने हृदय से विश्वास करें और जाएं, अपने पूरे हृदय से विश्वास करें और स्वस्थ हो जाएं। बस आपको यही करना है, विश्वास। आप विश्वास, आप जो बाहर, आप लोगों के विषय में क्या है? क्या आप विश्वास में हैं? विश्वास कर रहे हैं? क्या हो यदि मैं आपको बताऊं यीशु ने आपको चंगा कर दिया है? वहाँ खड़े हुए, क्या आप इसका विश्वास करेंगे? चलना आरंभ कर दें। देखिए, अपने सारे हृदय से विश्वास के साथ। आप घर जाना चाहते हैं? जाकर अपना सांझ का खाना खाएं। विश्वास करें कि आपका पुराना अधीर पेट आपको छोड़ गया है। आगे बढ़ें, खाएं पिए, यदि आप चाहते हैं विश्वास। क्या आप विश्वास करते हैं? इस स्त्री के विषय में क्या है जो वहाँ बैठी है, इस छोटे के लिए प्रार्थना कर रही है, उस बालक में लहू में कुछ गड़बड़ है, आप विश्वास करती हैं परमेश्वर उस बालक को चंगा कर देगा? ठीक है, आप इसे ले सकते हैं। इसने उस महिला पर प्रभाव डाला, ठीक। आपसे अगली वाली, वो वहाँ बैठी तंत्रिका रोग से, रोग के लिए प्रार्थना कर रही है, ये ठीक है। आपसे अगली वाली, आपका भी एक भाई है जिसे मस्तिष्क में परेशानी है, ये ठीक बात है। माँ है जिसकी आँख खराब है, आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हैं परमेश्वर उनको चंगा कर देगा, आमीन। आप उसका विश्वास करते हैं? आपके विषय में क्या है जो आप पहिए वाली कुर्सी पर हैं? आप विश्वास करते हैं? ये आपका पुत्र वहाँ बैठा है, उसने तब कहा, ये आपका पुत्र है, आपके चेहरे पर कैंसर है, आप ऊंचा सुनते हैं, आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की खोज में हैं, ये ठीक बात है। यदि आप इसका विश्वास करें अपने पूरे हृदय से, आप उसके लिए विश्वास करें, पुत्र के लिए आप ये अपने पूरे हृदय से विश्वास करें, उसके कान में बता दें, अपना हाथ उस पर रखें और वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है? क्या आप विश्वास करते हैं कि मसीहा, परमेश्वर का महान मसीहा अपने लोगों में हलचल कर रहा है? क्या आपकी इच्छा है ये सब कुछ छोड़कर उसका अनुकरण करें? यदि आप, तो आप अपने हाथों को उठाएं और कहें, मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसका विश्वास करूंगा, हर वचन जो उसने कहा मैं उसका विश्वास करूंगा, मैं अपने जीवन को सीधा करूंगा, मैं उसके लिए काम करूंगा। परमेश्वर अनुग्रह करे, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब यहाँ कितने विश्वासी हैं? अपने अपने हाथों को उठाएं। कौन उसके समीप आना चाहते हैं और उसे अभी स्वीकार करना चाहते हैं? ये ठीक यहाँ पर है, ये उसकी उपस्थिति है, वो व्यक्ति जो पीछे बैठा है उसे प्रोस्टेट का रोग है, भाई ये समाप्त हो गया, परमेश्वर ने आपको तभी चंगा कर दिया। ये घूमती हुई ज्योति में चारों ओर इस भवन में घूम रहा है, इस समय कुछ भी हो सकता है, हमारा दूसरा पेंटिकोस्ट हो सकता है। यदि आप विश्वास करें, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और आप में से हर एक अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की ओर उसे महिमा दें। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं पिता, क्योंकि आप ही हमारे बचाने वाले और हमारे परमेश्वर हैं। आप यहाँ पर हैं, आपने वचन को प्रमाणित कर दिया, आपने ऐसा है सिद्ध कर दिया है, आप परमेश्वर हैं, वो मसीहा कल आज और सर्वदा एक सा है, बिना असफलता के, बिना संदेह आप वही प्रभु यीशु हैं, उसके पवित्र नाम को महिमा मिले। क्या आप उससे प्रेम करते हैं तो आमीन कहें। आप में से कितने यहाँ विश्वासी हैं, अब अपने हाथ उठाएं। अब यीशु ने स्वयं ये कहा है, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, यदि वे अपने हाथ बीमारों पर रख देंगे वे चंगे हो जाएंगे। केवल मैं ही नहीं हूँ जिसके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास भी है, आप एक विश्वासी हैं, वैसे ही जैसे मैं एक विश्वासी हूँ। अब अपना सारा संदेह छोड़ दें, अपना हाथ किसी के ऊपर रखें और विश्वास करें, परमेश्वर उस व्यक्ति को चंगा करने जा रहा है अपने वचन के अनुसार। यदि वो इसी प्रकार बना रहेगा, आप अपना हाथ किसी पर रखें, उनके लिए प्रार्थना करें, कहें प्रभु इस व्यक्ति को चंगा कर दें, प्रार्थना करें और देखें ये होता है, आप एक विश्वासी हैं। सामर्थ्य परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हमने शैतान को हरा दिया है, हमने उसे फटकार दिया है और उसकी सामर्थ्य अलग करके नष्ट कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो गए हैं।